अल्लाह ताला का एहसान एक और हम पर कि आज फिर हम सेहत की हालत में बेदार हुए और अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहाँ बिठा दिया। आइए दुआ करते हैं इस सोच के साथ कि ऐ मालिक, हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। जितना ज़्यादा आप और मैं इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, उतना अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए रास्ते खोलता है। और आप देखिए कि ये मौके इस वक्त कितने खूबसूरत हैं, इसको शायद आप जानते हों, लेकिन वो लोग जो आज भी घरों में मुस्तकिल रहने की वजह से डिप्रेशन के मरीज़ बनते जा रहे हैं और परेशान दिखते हैं, उन सब की ज़िंदगी में इस नूर को लाने में आपने मैंने मदद करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2020-2020। हम इस सिलसिले में आज 8वें पारे को कंटिन्यू करेंगे। हमने अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से इससे पहले सूरत अल अराफ में अल्लाह ताला की नेमतों का भी जिक्र देखा और आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप थे उनका जन्नत का सफ़र भी देखा। आज बात शुरू होगी लिबास से। पहला हुक्म जो इंसानियत को मिलता है आसमानों पे, ज़रा सा आज उस पे गौर करते हुए ये छोटी सी बात कह दूँ कि कुरान पाक में अहकामात को बड़ी तदरीज के साथ पेश किया गया। जो ही लफ्ज़ लिबास या हिजाब या लिबास कैसा होना चाहिए आता है, तो पहली गलत फहमी तो ये है कि हमारे जहन में आता है कि ये अहकामात सिर्फ औरतों के लिए हैं और औरतों को भी छोड़ दीजिए, औरतें कहती हैं ये हमारी बच्चियों को सुनवाइए। तो ये अंदाज़ इख्तियार ना कीजिए। बच्ची को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा अगर बच्ची की माँ को बात समझ आ चुकी होगी तो। दूसरी बात है कि लिबास मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। इंसानों और जानवरों में जो फ़र्क है वो एक बहुत बड़ा फ़र्क लिबास का भी है। अल्लाह ताला ने जानवरों को लिबास पहना कर भेजा और वो यूनी ड्रेस हैं, उनके पास इतनी चॉइसेस नहीं हैं हमारी तरह से कि अलमारी खोल कर पूछें कि क्या पहनूं। और इतना कुछ देख कर भी बाज़ बहनें भोल पने में कहती हैं कि है ही नहीं कुछ पहनने को, चलिए फिर चलते हैं कुछ ले आते हैं शाम में जो फंक्शन में पहनना है उसके लिए। तो कुछ ब्रदर्स इस तरह कहने पर मजबूर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने लिबास को इंसान के लिए एक बहुत ही प्यारा तोहफा बना दिया है। हर इंसान के जिस्म पर कुछ ऐब होते हैं, अल्लाह ताला उन ऐबों को छुपाने के लिए हमें लिबास सिखाते हैं। तो आज यहाँ पहली दफ़ा लिबास के मौजू पे बात होगी। कुरान पाक में ये बात तीन मुकामात पे खुल के आती है। एक तो सूरत अल अराफ की आयात जो हम पढ़ने लगे, फिर इसके बाद सूरत नूर में और फिर इसके बाद सूरत अल अहज़ाब में। इन सब बातों को सुनने से पहले एक चीज़ तो दुआ की सूरत में कह लेते हैं कि मालिक, हमें सुनकर मानने की तौफीक दे और हमारी जहाँ भी कमी बेशी है उसको तो अपनी रहमत से दूर फरमा दे। जैसे आप देखिए कि अभी तक हमने तकरीबन 8 पारों में जो बातें सुनी हैं तो सारी तो हमारे अंदर नहीं थी ना, ना सारी खूबियाँ और ना सारे गुण हैं। बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है कि इस मौजू को सुनते वक्त हम में से हर एक का लेवल फ़र्क हो। तो क्या कहना है कि अल्लाह सुनकर मानने की तौफीक दे। और जब बात समझ आ जाती है ना तो वो बहुत बेहतर होती है। चलिए आयत शुरू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। सूरत अल अराफ आयत नंबर 26-26। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी आदम कद अन्ज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासु तक्वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, नोट कीजिएगा, आपको मुझे हमारे बाप की निस्बत से पुकारा जा रहा है। हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मुजबे जीनत भी है, यानी ब्यूटीफाई करना, और तकवा का लिबास इससे बढ़कर है, यह अल्लाह की निशानियों में से है ताकि याद रखे। नोट कीजिएगा, अल्लाह ने लिबास को अपनी निशानी, अपनी आयत कहा है। ए औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे, जैसा कि इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में इनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो इनको इनकी शर्मगाहें दिखाए। वो और इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम इनको नहीं देखते हो। हमने शैतानों को इन्हीं लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। यानी ऐसे लोग अपने लिबास और अपने ड्रेस कोड की ज़्यादा केयर नहीं करते जिनके अंदर ईमान नहीं होता या कम होता है। और वो लोग जब कोई फुहश काम करते हैं तो कहते हैं, हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पे पाया है और अल्लाह ने भी हमको यही बतलाया है। यानी इंसान अमूमन लिबास के नाम पर भी बाप दादा की तकलीद को ही बुनियाद बनाता है। ये अलग बात है कि आज हमारी बच्चियों के ड्रेस उनकी दादियों और उनकी नानियों के ड्रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फुहश बात की तालीम नहीं देता, क्या अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते? तो लिबास का मौजू यहाँ आ गया तो जरा समझ लीजिए, अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसानों को जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ के जवाब में जालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन कहकर ये किताब थमा दी थी, और कुरान एक मुकम्मल जाब्ते हयात की तस्वीर कशी करता है। तो आपने अभी तक कितनी चीजें पढ़ ली जिसमें आप सूरह बकरा से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, नमाजों की बात, ज़कात की बात, जिहाद की बात, आयते बिर को जहन में ले आए तो सारे ही टॉपिक आएंगे। तो ये कैसे हो सकता था कि वो मालिक जो हमसे हमारी माँ से ज्यादा प्यार करे वो हमें लिबास के बारे में गाइड ना करे? और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा प्यार है कि उसने हमें हमारी सोच पे नहीं छोड़ा, माशरे के ट्रेंड पे नहीं छोड़ा, रिवायात का पाबंद नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि शरीयत के मुताबिक लिबास के लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या गाइडलाइन है। एक सिंपल सा मेयार बना लीजिए कि वो लिबास जिसमें नमाज पढ़ी जा सके, ये कम अज़ कम क्राइटेरियन है। और यहाँ ये भी नोट कीजिएगा कि इस वक्त यहाँ जो आयते हैं ये घर के अंदर, यानी एक औरत और एक मर्द अमूमी तौर पर क्या पहने। इसी तरह से आप सूरत नूर में जो देखेंगे वो क्या है कि घर के अंदर रहते हुए जहाँ कुछ महरम और कुछ गैर महरम रिश्ते होते हैं तो वहाँ औरतें खास तौर पे और मर्द भी क्या पहने। और सूरत अलाहज़ाब में फिर आएगा घर से बाहर जाते वक्त क्या पहने। आज क्या हुआ कि हमारी कुछ बहनों को गलती लगती है, लेट हो रही हैं, देर हो रही है, घर के कपड़ों में उठकर बाहर निकल आती हैं, और उससे भी ज्यादा है कि कमरे के अंदर पहने हुए लिबास में घर में फिरती रहती हैं। तो ये याद रखिए कि गलत तरीका होगा। आसान सी बात, वो लिबास जिसमें नमाज पढ़ी जा सके वो कैसा होगा अभी आप खुद सोच सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। फिर लिबास ढीला ढाला होना चाहिए, शफाफ हो, बारीक ना हो, यानी वसाफ ना हो और शफाफ ना हो, दो लफ्ज वाव स्वाद अलिफा वसफ बयान ना करे, स्ट्रेची ना हो, जिस्म के साथ चिपका ना हो और इतना बारीक ना हो कि अंडरगारमेंट्स भी दिखे। फिर इसी तरह सर्दी गर्मी से महफूज रखने वाला हो, नमूदो नुमाइश और तकब्बुर वाला लिबास ना हो। अब देखिए ये तो शरीयत का एक लीस्ट मिनिमम तकाजा था। आप अब देखिए कि इसमें रीश का भी एक लफ्ज आ गया, युवारी सौ आतिकुम की भी है। अमूमन लोगों से जब बात की जाए लिबास के मुतल्लिक तो बुरा मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये तो हमारा अपना मसला है, हमें इस पे भी क्यों कहा जा रहा है। तो आप देखिए कि नायात में अपने मैंने देखा कि किस तरह इब्लीस ने पहला हमला जो आदम अलैहिस्सलाम पर किया उसका हदफ क्या था कि लिबास उतर जाए। हराम का टुकड़ा पेट में जाते ही लिबास उतरने लगता है। लिबास और हमारा सोर्स ऑफ इनकम और हमारी ईटिंग हैबिट्स ये आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। आदम और हव्वा के पास जब शैतान आया और उसने वसवसे डाले वो उसके वसवसे का शिकार तो हो गए, लेकिन जो ही लिबास उतरा अब ना तो उन्होंने सूरत अल्लाह राफ पढ़ी थी, ना उन्होंने सूरत नूर और ना कोई और चीज़ पढ़ी थी, लेकिन फितरत की पुकार थी। यानी याद रखिए कि ये इंस्टेंट किस्म का रवैया था आदम और हव्वा का कि और तो कुछ है नहीं तो जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। ये जो बेहयाई है ना, ये डिविएटेड बिहेवियर है। बच्चा अपनी फितरत के एतबार से बाहया होता है। छोटे बच्चों की माएँ आज से मैं नोट कीजिएगा, जो ही आप अपने बच्चे को चेंज करने के लिए अनड्रेस करती हैं तो एकदम अपना पाँव खींचने लगता है। कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के सामने खुला ना रखिए, इससे उसकी हया खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने जो दिया वो क्या था कि एक मियाँ बीवी जो जन्नत में थे लेकिन शैतान ने इनडायरेक्टली वो फल खिलाया उनको, उनके दिल में वसवसे डाले। और याद रखिए कि शैतान हमेशा वसवसे के रास्ते दिल में घुसता है, जैसे इंजेक्शन की सुई लगती है ना, उसके बाद आप उसमें फिर कोई भी दवा डालकर मरीज के जिस्म में डाल दीजिए, किसी गुनाह का ख्याल बार बार दिल में आ जाए, समझ लीजिए कि शैतान ने अपना काम शुरू किया हुआ है और वसवसे का इंजेक्शन लगा रहा हुआ है। और इस वक्त फिर इंसान सोचे, अल्लाह ताला ने पहली नेमत जो जन्नत में दी थी आप देखिए कि वो दुनिया का इल्म था, दुनिया के इल्म के होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस के जाल से बाहर नहीं आ सके, फंस ही गए और लिबास उतर गया। जब किताब हिदायत वही इलाही दी जाएगी जो इससे अगली आयात में हम पढ़ेंगे और सूरत बकरा में पढ़ भी चुके हैं आप, तो आप देखिए कि इल्मुल वही के बगैर इंसान अपना लिबास ठीक कर नहीं सकता। आज भी आप देख लीजिए बच्चे क्या पहनते हैं, बच्चियां क्या पहनती हैं, औरतों का नहीं मर्दों का भी लिबास बदल गया। तो दोहरा लीजिए, पहली बात देखिए कितनी खूबसूरत है कि इंसान दुनिया में लिबास के साथ है, यानी लिबास और इंसान दुनिया में एक साथ भेजे गए। शुरू से हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, पहले इंसान बरहना फिरता था, जंगलों में रहता था, तो ये डार्विनिज्म के तोहफे थे जो अब खुद ही खत्म हो गए। मकसद लिबास क्या है? नंबर एक, रीश, जीनत। आप कपड़े पे मोती लगा सकते हैं, डिजाइन वाला कपड़ा पहन सकते हैं, प्रिंटेड पहन सकते हैं, उस पे लेस और उस पे कोई बटन्स लगा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। रीश परिंदे के पर को भी कहते हैं। अब मर्दों के अंदर ये रुझान चूंकि कम होता है, तो औरतों को इसकी तरफ ज्यादा ही तवज्जो देनी पड़ती है, शायद अपने वक्त और अपनी दोस्तों को देखते हुए। हरज नहीं है, शर्त एक है कि आपने जैसा भी लिबास बना लिया, पहन भी लिया, लेकिन एक दफा घर से बाहर निकलते वक्त जहाँ जूता पहनते हैं, जहाँ जैकेट पहनते हैं, तो कद और आईने में देखा करें कि क्या मेरा ये लिबास शरीयत के तकाजे पूरे करता है। जीनत घर में है, शौहर बीवी या औरत कुछ भी पहन ले, कम से कम लिबास में भी आप अपने आप को रख सकते हैं किसी भी मौके की मुनासिबत के एतबार से भी। लेकिन अगर आप उन्हीं कपड़ों में बाहर जाएं तो ये तो ऐसे ही है कि छुरियां घर में पड़ी हुई हैं और बच्चे भी उससे खेल रहे हैं। औरत जब बाहर जाती है तो फिर मर्द उसको देखते हैं, ये फितरी सी बात है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है, इसका इनकार कोई कर नहीं सकता। तो अपने लिबास को खूबसूरत कीजिए, लेकिन दूसरा मकसद सतरपोशी। सतरपोशी देखिए कि इसमें माइंड करने की क्या बात है, क्या एक इंसान बरहना बाहर जाना चाहता है? आप देखिए गोश्त का पहाड़ नहीं लगता। जानवरों और इंसानों में रिलेट कीजिए, जानवर ऐसे ही निकल पड़ते हैं, उनका अल्लाह ने एक काला, जैसे भैंस के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा पहना दिया अल्लाह ने, गाय को एक भूरे रंग का पहना दिया, किसी के ऊपर बाल लगा दिए, किसी पे खाल लगा दी। अल्लाह ने आपको मुझे इज्जत दी है, आज से एक जुमला लिख लीजिए कि लिबास पहनना इंसानियत है जो उसको जानवरों की सतह से ऊपर करती है, और कम लिबास शैतान से कुर्बत का इजहार है। जितना आप शैतान के करीब होंगे आपका लिबास मुख्तसर से मुख्तसर होता रहेगा। हम सब अपने लिबास को देखें, आप देखिए कि मुख्तलिफ तरह से लिबास बिगड़ गए, और ख़ास तौर पर आज उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा फितना कि आज ख़वातीन और ख़ास तौर पर यंग बच्चियाँ जो वेस्टर्न माहौल के असर में पलती हैं वो अपने लिबास का ख्याल नहीं करती। तो इस पर तो अब कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई, यहाँ बैठकर इरादे कीजिए, आज इस लेक्चर के बाद आप अलमारी खोलिए, अपने एक एक ड्रेस को खोल कर देखिए जो बाहर कहीं भी पहन के जाती हैं या इवन घर में पहनते हैं, चिपके हुए पिजामे पहनकर बेटियां बैठे और बाप बैठे हों। बहनें जब मुख्तसर कपड़ों में होंगी तो क्या भाइयों को खाम खा में परेशानी नहीं लाहक हो जाएगी? फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप बाहर जाने लगे तो देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो बाप और माँ का दुश्मन था क्या वो आपका मेरा दुश्मन नहीं होगा? तो अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को आपके मेरे सामने रखा, और साथ ही साथ ये भी याद रखिए नीयत तो आपको करनी पड़ेगी, यहाँ बैठ कर नीयत कीजिए, इरादा पिछले पारे का हिस्सा याद कर लीजिए, हिदायत का ताल्लुक इरादों से है। कई दफ़ा का कुरान पढ़ा हुआ भी हमारे इरादे ना बदल सका, तो आज इंशाल्लाह इसकी नीयत करेंगे और इरादा भी करेंगे। इसके बाद देखिए कि लिबास और इबादत में एक ताल्लुक पैदा करने के लिए अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या फरमाया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आयत 29, कुल अमर रब्बी बिल किस्त। आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो, और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि इस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ताला ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था इसी तरह तुम दोबारा पैदा होगे। लिबास के साथ जीनत का लफ्ज, और वो भी इबादत के लिए। अब मुझे बताइए कि अगर आप इस आयत को हदीस से काट कर सुनेंगे कि जब भी मस्जिद में जाने लगो तो जीनत कर लो, तो क्या मतलब समझेंगे इससे? क्या आप ये समझेंगे कि आप बस मुझे इबादत करनी है और इसी तरह से मेकअप करना है और तैयारी करनी है? नहीं, बल्कि आगे अगली आयत आपको मजीद वाजे करेगी। बास लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी है और बास पर गुमराही साबित हो गई। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है और ख्याल रखते हैं कि वो राह रास्त पर हैं। इसको नोट कीजिएगा। ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। तो क्या पता चला कि कि मस्जिद यहाँ असल में वाकया बयान करने का मौका नहीं है, लेकिन अरब लोग खाना काबा का तवाफ करते वक्त बिल्कुल बरहना हो जाते थे, नेकिड हो जाते थे, और पूछने पर बताते कि चूंकि इन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं तो हम अपने नेचुरल ड्रेस में लाते हैं अपने आप को। ये है शैतान की चीज़ें, ये है लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया और ख्याल रखते हैं कि वह राह रास में। दुनिया में दो रास्तों से बेहयाई फैली, ख़ास तौर पर ड्रेस कोड में, एक कल्चर के नाम पे फैशन और उसके अंदर वो सारी मिथ्स ले लीजिए जो आपको आज मुख्तलिफ रंग में दिखती हैं, बड़े से बड़े शोज़ देख लीजिए, बड़ी से बड़ी वॉक और टॉक देख लीजिए, बड़ी से बड़ी आप देखिए कि ख्वातीन को स्क्रीनों पर बिठाकर ड्रेस की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। इसी तरह दूसरी चीज़ है दीन मज़हब। आज भी आप हिंदू मज़हब में देखें तो दासियाँ, कह लीजिए कि मंदिरों की टेकहेयरर्स, उनका लिबास ना होने के बराबर होता है, और फिर उसके बाद वहाँ क्या कुछ गंदगी होगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता दी कि जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसका लिबास मुख्तसर हो जाता है, क्योंकि ऐसा बंदा शैतान के हाथों में आता है। और अल्लाह ताला आपको मुझे ये बता रहे हैं कि बनी आदम सोच लो, तुम्हारे वालिद से दुश्मनी रखने वाला तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? और जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ हो तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है? माँ नाराज़ हो जाए तो आप बर्दाश्त करते हैं, शौहर नाराज़ हो जाए तो आप बर्दाश्त करते हैं? ये अलग बात है कि आप क्या, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो हदीस में ये लफ्ज़ ज़ीनतकुम से मुराद क्या लिया गया? कपड़े पहन लो। वो नेकेड जाते थे, कहा तुम कपड़े पहनो, ये नहीं कि औरत जो है वो उस वक्त अब मेकअप करे, तैयारियां करे और जाए कि अल्लाह ने कहा जी जीनत करो। तो आप देखिए कि अपनी मर्जी की तफसीरों से फिर कुरान पाक को समझें तो इस तरह की शुबे लग जाते हैं। और याद रखिए कि औरत तो पूरी की पूरी औरा है, औरत तो छुपी हुई चीज़ को कहते हैं। पहले दौर में लोग कहते थे मस्तूरात के लिए, तो मस्तूरात, मस्तूरात उनकी जमा, सतर उसके अंदर छुपा हुआ है, यानी छुपाई हुई चीज़ें। तो ऐसी ख्वातीन जो बाहर खुलेआम ले चलती हैं अपने आप को, तो माशरे में फिर उससे बहुत सारे फितने भी आ जाते हैं। और इससे एक और बात भी पता चलता है कि ड्रेस कोड नमाज का ख़ास तौर पे इतना सातिर हो, सर से लेकर पाँव तक छुपे। हमारे इवन देसी कल्चर में लंबे लंबे चौक्स हैं, पतली पतली शिफोन की फिटेड शर्ट्स हैं, आज के दौर में तो पजामे भी टाइट्स हैं, आज आप देखिए टखने तक खुले होते हैं। याद रखिए इसमें नमाज नहीं होती, शिफोन के दुपट्टों में नमाज नहीं होती, जाली के दुपट्टों में नमाज नहीं होती, वो पतले शिफोन लॉन के दुपट्टे जिसमें चिकन है, छेद हैं, उसमें नमाज नहीं होती। तो इसको भी ज़रा सा समझने की ज़रूरत है, अल्लाह करे कि हमारे वक्त में बरकत आ जाए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब शैतान दोस्त बनता है तो क्या करता है? पहली बात है कि शैतान इंसान का अकीदा ख़राब करता है, उसको मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स में उलझा देता है। फिर इसी तरह शैतान अकायद ख़राब करने के लिए जादू सिखाता है, और जादू करने वाले कहते हैं कि हम तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह शैतान इंसान को बद अखलाक बना देता है। बस आप देखिए लोग क्या कहते हैं, हम दिल में कोई बात नहीं रखते, और इसी तरह की चीज़ें अपने अंदर ले आते हैं। और इसी तरह आप देखिए कि शैतान इंसान का लिबास ख़राब कर देता है। फिर इसी तरह देखिए कि शैतान को खुश करने वाला लिबास कौन सा है जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? अपने हर जोड़े को इस पे देख लीजिए, चाहे वो वेडिंग ड्रेस क्यों ना हो दुल्हन का, वो चाहे आपका मेहंदी में पहनने वाला ड्रेस कोड क्यों ना हो, क्यों नमाज का वक्त आए तो क्या करेंगे? तभी तो फिर लोग कहते बाद में पढ़ेंगे। मगरिब की कितनी नमाजें फौत होती हैं हमारे शादी हालों में, और इसी तरह से अल्लाह माफ़ करे जो कुछ है वो हम सब जानते हैं, शादी के भी दिन को नमाज पढ़े नहीं, हर ड्रेस वो जिसमें इंसान अल्लाह ताला के सामने जा सके, मौत आ गई तो क्या करेंगे? फिर इसी तरह तस्वीरों वाले और बारीक लिबास शैतान को खुश करते हैं। शोहरत और नामवरी वाला लिबास नहीं पहनना। हदीस में आता है कि ऐसे शख्स को क्यामत के दिन खुजली के कपड़े पहनाए जाएंगे। मतलब कोई शख्स अपने आप को, आप देखिए, खुजली करता है तो ऑकवर्ड लगेगा ना, तो सब उसको देखेंगे। तो इस सोच से पहनना कि लोग मुझे देखें, बस महफिल में मैं आऊं तो सभी हैरान हो जाएं और मैंने तो पहले से बताना नहीं, और थीम ड्रेसेस और फुला, जब कोई बड़ा मकसद कौमों की ज़िंदगी में नहीं रहता तो फिर इसी किस्म की चीज़ें आम होती हैं। अपने लिए पहनी है, तहदीस नेमत के लिए पहनी है, अपने महरम रिश्तों को दिखाने के लिए पहनी है, किसी ने आपको दिया है कोई गिफ्ट तो उसको दिखा दीजिए, खुशी के साथ पहनी है, कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि आपको चुभ रहा है और आप दूसरों को दिखा रहे हैं। फिर इसी तरह मर्द और औरत की बाहमी मुशाबहत वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए, इस पर तो बहुत वाज़ह हदीसें हैं, यानी औरत मर्द की मुमासलत ना करे, मर्द औरत की नहीं। कभी किसी मर्द को गरारा पहने हुए देखा आपने? साड़ी बांधे देखें तो कैसा लगे, ना वो मर्द लगेगा ना वो औरत लगेगी, औरत भी उतनी ही ऑकवर्ड लगती है मर्दों वाले कपड़े पहन के। ये अलग बात है कि हमारी नज़रों की हया खत्म हो गई, और बाहर की दुनिया में चलते फिरते वो कह लीजिए ना कि सिगरेट किस्म के ड्रेसेस जिस्म के ऊपर सिले हुए, आप जरा इस नजर से उन पजामों को भी देखिए कि जो थाई से लेकर हिप्स और उसके नीचे ऊपर जिस्म का एक एक जोड़ दिखाने वाले, तो ये लिबास तो नहीं है कि हम चाहते थे कि अल्लाह ताला हम पे भी एक खाली चढ़ाता? खाल तो पहले ही चढ़ी हुई है। इसी तरह गैर मुस्लिमों से मुशाबहत वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है किताबुल लिबास में, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा से ये रिवायत हम तक पहुंची, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जागे और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज रात कैसे कैसे फितने नाजिल हुए और इसके खजानों से कैसी कैसी रहमतें नाजिल हुई। कौन है जो इन हुजरों में सोने वाली खवातीन को जगाए? दुनिया में लिबास पहनने वाली औरतों में से कितनी ऐसी हैं जो क्यामत के रोज नंगी होंगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए कि अल्लाह के नबी को आज से 1400 साल पहले भी ये बात अल्लाह ने बता दी कि एक वक्त आएगा कि लिबास सिर्फ दिखावे के लिए होगा, लेकिन उसमें युवारी सवातिकुम की बात नहीं रहेगी। अब इसको सुनकर ये भी ना कहिए कि बिल्कुल बोरिंग हो जाए, बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और बड़ी बुरी बात है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल मन हर्रम ज़ीनतुल्लाहिल्लती अख़रज लिइबादिही। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के पैदा किए हुए असबाब ज़ीनत को जिनको इसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किस शख्स ने हराम किया है? आप कह दीजिए कि ये अशिया इस तौर पर कि क़यामत के रोज़ खालिस होंगे अहले ईमान के लिए, दुनियावी ज़िंदगी में मोमिनों के भी हैं। हम इसी तरह तमाम आयात को समझदारों के वास्ते साफ साफ बयान करते हैं। तो क्या खुलासा निकला? अक्ल से पूछो किस वक्त क्या पहनना है। जिंदगी का मकसद लिबास बनाना ना हो, बस ये याद रखिए, बनाना और दिखाना। और एक दफा पहन कर कहते हैं आप दे दो किसी को, ये मैं दोबारा नहीं पहनूंगी, ये भी एक किस्म का इसराफ है। आप फरमा दीजिए कि अलबत्ता मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है। अब नोट कीजिएगा, ये हराम की लिस्ट है। इन तमाम फुहश बातों को जो एलानिया हैं और जो पोशीदा हैं, और हर गुनाह की बात को, और ना हक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात न लगा दो जिसको तुम नहीं जानते। अब इस लिस्ट में अपने आप को झांक लें। हमें हर एक को अल्लाह ताला बार बार मौके देता है कि अपनी इसलाह कर लो, देख लो तुम किधर हो, कहाँ खड़े हो। हर गिरोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है, सो जिस वक्त इनकी मियाद मुअय्यन आ जाएगी, इस वक्त एक घड़ी ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। यानी जिंदगी में जो मस्ती और मौज करनी है कर लो। तो क्या देखा हमने? 1 से 34 आयात के मेन जो थीम्स थे, अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी नहीं करनी, किस्सा आदम और इबलीस जिस पर अल्लाह की रहमत दूर हुई और उसने किस तरह से बहकाया। फिर हमने इसमें देखा कि लिबास में मियाना रवी इख्तियार करना चाहिए, यानी बीच का रास्ता रखना चाहिए, ना तो जिंदगी का मकसद ये बन जाए और ना बिल्कुल ही लिबास को पीछे कर दीजिए। और इसी तरह अल्लाह तआला दिल का हुक्म देता है और बेहयाई हराम है, ख्वाह जाहिर हो या पोशीदा। यानी जाहिर में को बेहयाई वाले काम करे महफिलों में जाकर, या फिर पोशीदगी में अपने बेडरूम में को गलत चीजें देखे सुने, ये दोनों चीजें अल्लाह के यहाँ हराम है। फिर इसी तरह फरमाया, अल्लाह के नबियों के दुनिया में भेजे जाने का असल मकसद ही क्या था? कि वो अल्लाह के अहकामात इंसानों तक पहुंचाएं। इसीलिए फरमाया, ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हों, जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करें, तो जो शख्स तकवा अख्तियार करे और दुरुस्ती करे, सो इन लोगों पर ना कोई अंदेशा होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जो लोग हमारे इन अहकाम को झुटलाएं और इनसे तकबर करे, वो लोग दोजख वाले होंगे और इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कल पैगंबर आते थे, अल्लाह का पैगाम देते थे, आज पैगंबरों के जरिए से ही दीवी रहनुमाई ये किताब और सुन्नत की सूरत में हमारे हाथों में है। देखिए कितनी प्यारी बात है कि आप तकवा से रहें, बचते बचाते जिएं, जिंदगी करें, अपनी इसलाह करें, जहां कमी है उसको दूर कर दें। बाजू नहीं थे कमीजों पे लगा लीजिए, कमीजें छोटी थी उसको लंबी कर लीजिए, टाइट थी उसके साइड में एक पट्टी डालिए, खुला कर लीजिए, बस और क्या करना है, फेंकने तो नहीं है ना कपड़े। हर चीज का कोई ना कोई ऑल्टरेशन प्लान तो होता ही है। और फिर इसके बाद देखिए कि जो लोग हमारे इन अहकाम को जुटलाएं, तकबर करें, वो दोजख में होंगे, और कल एक दो दिन की बात नहीं है। हुम फीहा खालिदून। सो इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बतलाए? इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से है वो इनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने आएंगे, तो कहेंगे वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हमसे सब गायब हो गए और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। सोचिए जब जान निकलेगी उस वक्त किस हाल में होंगी। आप देखिए सारी जिंदगी तो शैतान के नक्शे कदम पे चले, और खास तौर पे शैतान के नक्शे कदम में जब हम लिबास के मामले में चलते हैं उस वक्त तो हद ही पामाल होने लगती हैं। तो अगर मौत आ गई किसी ऐसी चीज में, किसी ऐसे हाल में, तो क्या करेंगे? और ऐसे वक्त में फिर अल्लाह ताला क्या फरमाता है इन लोगों को जिनका जिक्र ऊपर आया? अल्लाह ताला फरमाएगा, जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, इनके साथ तुम भी दोजख में जाओ। जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें सब जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, बस इनको दोजख का अजाब दुगना दे। अल्लाह ताला फरमाएगा सबका ही दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं। जरा सोचिए, लाइक माइंड पीपल लिव्स टुगेदर। दुनिया में उन दोस्तों में बड़ा दिल लगता था जो इस किस्म की बातें करती थी जिनका जिक्र ऊपर हुआ। अल्लाह ना करे कहीं जहन्नुम में भी एक दूसरे को देखना पड़े। और नोट कीजिए, दुनिया में तो अपनी दोस्तों को देखकर हेलो हाय बाय कहते हैं, हग्स देते हैं, वहां एक दूसरे पे लानत करेंगे कि हम तो पहले ही तंग थे, तुम भी आ गई और मुश्किल पड़ गई। और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, सो तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का मजा चखो। याद रखिए कि जहन्नुम के अजाबों में से एक बहुत बड़ा अजाब लड़ाई झगड़ों का है, कोसने देंगे। जहर ऐसे ही होता है, जब बात ना समझ आए तो शोहर बीवी को कोसेगा, बीवी शोहर को, और बीवी जो है वो पकड़ के बच्चों को एक चांटा लगा देगी। यही होता है हमारे कल्चर में। तो सोचिएगा कि आपके मेरे बहकने का जिम्मेदार कौन है। उससे पनाह मांगे, एक सिस्टर की बात याद आ गई जिन पे बहुत से बाल थे और बेचारी बहुत परेशान थी। तो कहती है, मैं जब कभी बैठती हूँ तो मुझे कॉलेज की अपनी वो दोस्त याद आती है और मुझे उस पर गुस्सा आता है जिसने किसी एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए मेरा वो बाल प्लक किया था। वो दिन और आज का दिन मेरे चेहरे पे इतने बाल हुए, जाहिर है फिर उसको रिमूव करने में और से और कोशिशें हुई तो बाल बढ़ते गए। इसी तरह कयामत के दिन भी इंसान अपने उन दोस्तों को बुरा कहेगा जिनकी कंपनी में इंसान और से और गुनाह करने लगता है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे तकबुर किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में नहीं जा सकेंगे जब तक ये ऊंट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए। और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। ये उन आयतों में से है जो बिल्कुल इब्तदाई दुरूस में मैंने कसरत से पढ़ी, और इस पे आज भी हमारे पास एक लेक्चर मौजूद होगा, जर्नी ऑफ सोल, रूह का सफर। मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है? मोमिन की रूह ऊपर जाती है, आसमानों पे बड़े प्रोटोकॉल के साथ रखी जाती है, लेकिन बदबख्तों की रूह को तो पहले ही आसमान से पीछे किया जाता है। तो याद रखिए, यहाँ कुफार की बात नहीं है। आयतों को झुटलाना मुसलमान का होता है, और तकब्बुर यह कि मैं इन पे अमल नहीं कर सकता। अभी पीछे चंद हुक्म सुने, सुनने के बाद बंदा कहता सॉरी आई कैन डू दिस। तो ऐसे तनाजर में समझ लीजिए कि ना दुआओं के लिए दरवाजे खुलते हैं और ना आसमानों पे रूह के जाने के दरवाजे खुलते हैं। और कब्र का हाल क्या है सुनिएगा, और ये चीज़ हमें अहादीस से भी मिलती है। जब जहरे ऊपर नहीं गए तो कब्र में तो जाना ही था, इनके लिए आतिशे दोजख का बिछोना होगा और इनके ऊपर इसी का ओढ़ना होगा। हदीस से पता चलता है कि ऐसे शख्स की कब्र में अल्लाह ताला जहन्नम की खिड़की खोल देते हैं। सोचिए, मैट्रेस भी आग का और कंफर्टर भी आग का। और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख्स को इसकी कुदरत से ज्यादा काम नहीं बताते, वही लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या माँ अपने 5 साल के बच्चे को कोई 10 साल के बच्चे वाला काम देती है? 10 साल की बेटी को माँ कोई 20 साल वाली खातून का काम देगी? नहीं देगी। तो अल्लाह ताला तो बहुत ही मिजाज शनास हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको मुझे जो अहकामात दिए हैं उसको दिल की खुशी से मानिए। दिल तो खोलिए, फिर हुक्म भी अंदर जाएंगे, तौफीक भी मिलेगी। और जो कुछ इनके दिलों में कीना था हम इसको दूर कर देंगे, इनके नीचे नहरें जारी होंगी। दुनिया में दिलों से कीने निकाल दीजिए, देखिएगा दुनिया भी जन्नत बनेगी। तो जन्नत में कोई एक दूसरे को देखकर दुखी नहीं होगा। और अब देखिएगा जरा बात, वकालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। हिदायत और शुक्रगुजारी का रब्त इस आयत में बहुत प्यार से देखेगा। और वो लोग कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया और हमारी कभी रसाई न होती, यानी हम कभी जन्नत तक ना पहुंच सकते अगर अल्लाह ताला हमको ना पहुंचाता। वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लेकर आए थे, और इनसे पुकार कर कहा जाएगा तिलकल जन्ना, अल्लाह अकबर, तिलकुमुल जन्नतु वरिसतुमुहा, ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। कैसे? दुआओं से, इरादों से, ख्वाहिशों से नहीं, बिमा कुन तुम तामलून, अपने आमाल के बदले। तमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। देखिए बात अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई थी और जन्नत के दरवाजे में खड़ा होकर कह लीजिए जो पहला जुमला बंदे की जुबान से निकलेगा वो यहाँ लिख दिया अल्लाह ने, वकालु अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? कि अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ तो बंदा मोमिन की डिक्शनरी में होता है, कहा करे अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा खुशी में भी इतना शुक्र करता है जितना गम में, गम में भी उतना जितना खुशी में। सेहत और बीमारी का शुक्र एक ही जैसा होता है। अल्लाह ताला हमारी दिलों को खोल दे तो हाय बाय नहीं, वहाँ अल्लाह की तारीफें होंगी। आज भी अगर किसी नेकी की तौफीक मिले, आज का पारा सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, आज इसके लिए हेल्प कर रही हूँ, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर एक से थोड़ी काम अपने दीन के लेता है। और अब एक मुकालमा सुनिएगा, बहुत दिल पे बोझ पड़ता है इसको सुनकर, और इसी में लफ्ज़ आराफ भी आता है शायद, जिसकी वजह से सूरत का नाम भी यही है। वनादा अस्हाबुल जन्नत अस्हाबन नार अन कद वजतना मा वातना रब्बुना हक्का। और अहले जन्नत अहले दोजख को पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था हमने इसको वाकई के मुताबिक पाया। यानी कि वो सब्ज वादे नहीं थे, वो सब्ज बाग नहीं थे, अल्लाह ने जो कहा था। जन्नत तो उससे भी प्यारी है। कभी ऐसा होता है आप ऑनलाइन से कोई चीज़ देख के ऑर्डर करते हैं और जब आती है तो उससे कई गुना हसीन होती है, आप खुश हो जाते हैं, आप स्टार देते हैं, ग्रेड्स देते हैं, अच्छे रिफ्लेक्शंस देते हैं। आज काम कर लीजिए, वल्लाही अल्लाह अपने वादों को पूरा करेगा। एक दिन आप जन्नत में होंगी, शहजादियों जैसे ड्रेस पहनिएगा, 70-70 हुल्ले पहनेगी जन्नत की औरत, उसके बावजूद जिस्म झलक रहा होगा, क्योंकि उसका हुस्न उसके मर्द के लिए होगा, क्योंकि उसने दुनिया में अपना जिस्म छुपाया था। तो जन्नत के वादों को सच समझते हुए अमल करना आसान हो जाता है। आप दूसरी तरफ भी सुन लीजिए, यानी हमने तो सच पाया, सो तुम में से जो तुम्हारे रब ने वादा किया था तुमने भी इसको वाकई के मुताबिक पाया। अब ये दो दोस्त भी हो सकते हैं, दो रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अब ये कैसे मुलाकात है, आज क्या मुश्किल है, सेटेलाइट देख लीजिए, एक जन्नत में ऊपर बैठा है, एक नीचे जहन्नुम में खड़ा हुआ है। और पूछा जा रहा है सुनाओ भाई, जैसे हम हालचाल नहीं पूछते फोन उठाकर, क्या हाल, अच्छा गर्मी, अच्छा लॉकडाउन कैसा चल रहा है, अच्छा कुछ हुआ, कुछ बेहतरी हुई, यही हो रहा है। कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, जन्नत में जाने लगा, आई एम वेरी फाइन, मेरे साथ मेरे रब के वादे पक्के हैं, ना खौफ है, ना गम है, ना फिक्र है। तुम सुनाओ, तो सुनिएगा जवाब अब जहन्नुम में फंसे हुए शख्स का। वो कहेंगे हाँ, एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो इन जालिमों पर। वो कौन थे जो अल्लाह की राह से रूगर्दानी करते थे, नोट कीजिए, यानी अल्लाह के रस्तों से भागने वाले, अल्लाह के हुक्मों से भागने वाले, सुनने वाले ना मानने वाले, सुनाने वाले बिल्कुल भी ना मानने वाले, और सबसे बढ़कर इसमें कजी तलाश करते थे, मनमानी तफसीरें, मनमानी बातें, हाँ एक्चुअली ये बिकॉज ऑफ दिस, यानी कुरान का हुक्म सुना समय ना बताना, तौफीक मांगिए, आप क्यों दलील मांगते हैं। और वो लोग आखरत के भी मन करते, कुछ नहीं होता, मौज मस्ती करो, इधर ही है सब कुछ। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और अराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे, वो लोग हर एक को इसके कियाफे से पहचानेंगे। कियाफा किसको कहते हैं? साइन से, चेहरे से, निशानियों से। और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। देखिए सलाम वहां भी है, दुनिया में भी सलाम काम कीजिए। अभी ये अहले आराफ यानी दोजख और जन्नत के दरमियान जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और इसके उम्मीदवार होंगे, और जब इनकी निगाहें अहले दोजख की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे, अब ये जुमला सुन लीजिए, इसमें ही उनकी हसरत, कालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिल ज़ालिमीन, ए हमारे रब हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल न कर। और अहले आराफ बहुत से आदमियों को जिनको ये इनके कैफे से पहचानेंगे कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने आप को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम ना आया, यानी दुनिया में तो बहुत डिजाइनर थे, क्या बना तुम्हारे साथ, तुम तो कहते को हमसा हो तो आए सामने, और तुम्हें तो अपने ड्रेस पे नाजी बड़ा था कि जो मेरी महफिल में पजीराई होती है वो तो किसी की भी नहीं, और वो जो तुमने एक लाइक माइंडेड ग्रुप बनाया हुआ था किधर गए सारे। और इसी तरह हर एक इंसान जो किसी को भी दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में एक गैंग बनाकर पेश करे, किधर के वो सारे, तुम्हारे कुछ काम ना आया। क्या ये वही हैं जिनकी निस्बत तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत ना करेगा, इनको यूं हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ है और ना तुम मगमूम होगे। यानी जिनको दुनिया में तुम निकम्मे कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, ये क्या दुपट्टे ओढ़ के फिरती हैं, ये मासियां लगती हैं, जाओ देख लो वो किधर हैं। यानी आप देखिए कि इससे बढ़कर अल्लाह ताला खोल कर क्या और बात कहता, लेकिन दिल मान जाए तो बात भी समझ आती है। और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे। इस हसरत को महसूस कीजिएगा। वनादा असहाबुन नार असहाबुल जन्ना अनफीदु अलैना मिनल मा, और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो या और ही कुछ दे दो जो अल्लाह ताला ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ताला ने दोनों चीजों की काफिरों के लिए बंदिश कर दी। वहां तुम नहीं बनते थे ना, अल्लाह ने यहां बांध दिया। वहां तुमने हराम को हराम नहीं करार दिया, आज तुम पे जन्नत की नेमतें हराम है। क्या बदबख्ती है उस शख्स की। अल्लाह ऐसे किसी पे ऐसा मामला नहीं करते। उन्होंने दुनिया में अल्लाह के हलाल और हराम का फर्क न देखा। अल्लाह ने वहां यही मामला किया। जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहव लाएब बना रखा था, नोट कीजिएगा, जहाँ लहव लाब होगा ना वहाँ ड्रेस खराब होंगे। आज तो हमारी बच्चियां बाज़ औक़ात पार्टीज में वो कपड़े पहनी दिखती हैं जो वल्लाह ही आज से शायद 20 साल पीछे इंग्लिश फिल्मों में हीरोइनें ना पहने। आज दुल्हन का ड्रेस कभी आपने देखा? कभी ऐसा ड्रेस होता था आपकी खालाओं का और फूफियों का और दादियों का तो सवाल ही नहीं होता। कैसे ऐसे ऐसे शैतान ने दीन के हुक्मों को पीछे डालकर तकजीब की राह पे डाल दिया। कपड़े भी मुख्तसर और लहव लाएब के बगैर तो खुशियां भी नहीं चलती। जब तक मस्ती ना हो मजा ही नहीं आता। और जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम भी आज के रोज इनका नाम भूल जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह भूलता नहीं, मुराद इनको इग्नोर करेंगे, जैसे चिकन को ओवन में रख कर कोई भूल जाए। अब इनको ओवन में जलने दो, जहन्नुम के ओवन में जले क्यों, जैसा कि वो इस दिन को भूल गए और जैसा ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। नहीं अच्छी लगती थी इनको हमारी आयतें, और आयतें क्या, कुरान ही अच्छा लगता था, क्योंकि इसी को पढ़कर तो फिर ये थोड़ी सी अंदर एक एहसास की जोत जगती है। यानी इसी कुरान को पढ़कर तो इंसान परेशान होता है, गिल्टी कॉन्शियस रहता है, ना ये पढ़ो ना करो, इसीलिए तुम पढ़ते नहीं है, ये टोन थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं वल कजी ना हम भी किताब इन फसल ना हो अलामिन हदम व राहमली कौमी मिनून, और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने इल्म कामिल से बहुत वाजह करके बयान कर दिया, और वो जरिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं। नोट किया आपने? लोग इतने समझ नहीं आता, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। मसलन चेहरे का पर्दा है कि नहीं, क्या पहनो क्या ना पहनो, अल्लाह कह रहे हमने ओपन बुक। देखिए अगर आप तर्जमे के साथ साथ पेन के साथ या उंगली के साथ हाथ फेरते हैं ना, तो आपको मेरा हर बोला हुआ जुमला उस आयत की एक तफसीर लगेगा जो आपके सामने होती है। एक सेकंड की फ्लक्चुएशन भी ना आने दिया करें अपने और इस किताब के बीच में। अल्लाह ना करे नेट से कोई आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन आपका जहन का जो सिग्नल है वो हमेशा इसी के साथ रहे, तो आप महसूस करेंगे कि इस किताब को पढ़ने के दौरान ही आपका दिल बताता है कुरान बहुत क्लियर बात करता है। ये तो आज दीन के नाम पर हमने क्वेश्चन आंसर्स और अपनी पसंद का आलिम और उससे पूछो और उससे पूछो दीन को मशकूक किया। गूगल को बंद कर दीजिए, गूगल से इल्म नहीं आएगा, और उलझेंगे और परेशान होंगे, वो आपको एक बात के 10 जवाब देगा। ये किताब लीजिए, कितनी वादे फसल ना हो अला इल्म, इल्म लीजिए खुला खुला, हिदायत और रहमत फिर मिलेगी, लेकिन लोगों के पास वक्त ही नहीं। इसलिए फरमाया हल जन जरूर न इल्ला तावीला हो, इन लोगों को और किसी बात का इंतजार नहीं, सिर्फ इसके आखिरी नतीजे का इंतजार है। जिस रोज इसका आखिरी नतीजा पेश आएगा, और इस रोज जो लोग इसको पहले से भूले हुए थे यूं कहेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे। जैसे आज के दौर में हम में से कोई के अब समझ आया है, वहां जाके देखिए कहाँ जाकर बात समझ आई, जहां से सफर खत्म हो रहा था ये समझ आया कि सफर में साथ लेकर के आना था। तो वो पैगंबर लाते थे, आज पैगंबर की ये किताब लेकर आ रही है, काश हम इसको समझ जाए। सो अब क्या कोई हमारा सिफारशी है? फिर इंसान एंड पे यही ढूंढता है ना, अच्छा लेट्स सी आई विल डू समथिंग, अच्छा कोई है कोई काम करता है इधर, कोई मेरी मदद कर दे। क्या करेगा वो कि हमारी सिफारिश कर दे, या क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं? नोट कीजिए, यू टर्न नहीं है। इस दुनिया का रास्ता आखिरत की तरफ वन वे है। इसी तरह हिदायत के रास्ते से यू टर्न कभी ना मांगिए, वरना बहुत मुश्किल में फंसेंगे। ताकि हम लोग इन अमाल के जो हम किया करते थे बरखिलाफ दूसरे अमाल करें। नोट किया आपने? वहां जाके हसरत है, एक दफा जरा और एक सफर कर ले फिर देखते हैं क्या होता है। वहां जाके रिग्रेट फील होगा, बहुत सारे लोग रिग्रेट में होंगे कयामत के दिन। बेशक इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया, और ये जो जो बातें तराशते थे सब गुम हो गई। दुनिया में जुबानें चलती हैं इंसान की, वहां खुद को बैंक करप्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपनी शान देता है। आप नोट करेंगे जहां भी कोई ऐसा हुक्म होता है ना जो तबीयत पे बोझ पड़े, तो अल्लाह ताला उसके बाद फिर अपनी कुदरत दिखाते हैं। जैसे सूरत बकरा तीसरे पारे में माल के खर्च की दावत दी और साथ ही आयतुल कुर्सी पेश की। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे, तुम्हें अल्लाह की कदर अभी तक भी नहीं आई। चलो सुनो, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा किया है, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो रात से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वो रात इस दिन को जल्दी से आ लेती है। कभी आप रात होती भी देखे अपनी खिड़की में खड़े होकर, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ऊपर एक काले रंग की चादर उड़ाई जा रही है। और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब इसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो, ये या आपने मैंने भी रखना इंशाल्लाह याद, अल्लाह ही के लिए खास है खालिक होना। इस पे तो किसी को इतराज नहीं, फिरौन तक को भी नहीं था इतराज कि कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की, सूरज चांद उसने बनाए। मुश्किल क्या लगता है वो अगली बात है, नोट करिए, खास है खालिक होना और हाकिम होना। लोगों को क्रिएटर गॉड अच्छा लगता है, या ब्यूटीफुल नेचर, वेरी नाइस, या गॉड मेड दिस। हाकिम होना नहीं बर्दाश्त होता, उसका हुक्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे आप देखिए कि कुछ लोग हैं ना, मजदूरों से घर बनवाया, उसके बाद कहते भाग जाओ, अब क्या हम तुम्हें घर की चाबियां भी दे दें। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के बारे में ये सोचना कि दुनिया बनाकर अब बिल्कुल वो अलग हो गया और अब उसका तुम्हारे घर में कोई दखल नहीं। लोग अल्लाह को भी बेदखल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो अल्लाह ताला कहते हैं, इससे तुम्हारी तौहीद पुख्ता नहीं होगी, ये शैतान के नक्श कदम पे चलने वाली मिसाल है। तो लिहाजा सुन लो, बड़ी खूबियों से भरा हुआ है अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, हिदायत की दुआ मांगो, तौफीक की दुआ मांगो, अल्लाह की रजा वाले कामों की दुआ मांगो, गिड़गड़ा के भी और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला इन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं। पुकारिए रब को, आज अल्लाह से अपने लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि कल जब तेरे पास आऊं तो तुझे मुझ पे प्यार आ जाए। और हर ड्रेस कोड में अपने आप को मलबूस करके, अपनी स्नैपशॉट्स लेने के बाद, सेल्फीज लेने के बाद, एक नज़र अल्लाह की तरफ डाल के आसमान पे पूछा करें कि अल्लाह मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं इस हाल हुलिये में बाहर जा सकती हूँ। बस, और दुनिया में इसके बाद कि इसकी दुरुस्ती कर दी गई, फसाद मत फैलाओ और तुम अल्लाह की इबादत करो इससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नजदीक है। नोट कीजिएगा, रहमतें पाने के लिए नेक काम करने पड़ेंगे। और वो ऐसा है कि अपनी बाराने रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं। बादलों का फिनोमिनन, कैसे बारिश बनती है और फिर बरसती है, तो हम इस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हांक ले जाते हैं, फिर इस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर इस किस्म से हर किस्म के फल निकालते हैं। यूं ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम समझो, जरा सा गौर व फिक्र करो। अब देखिए कि यहाँ बारिश का फिनोमिनन है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप देखते हैं कि समंदरों के ऊपर से पानी ऊपर जाता है, फिर आसमानों पे जाकर कंडेंस होता है और फिर हवाएं उनको मुर्दा जमीनों पे लेती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला किसी भी दीन वाले को तैयार करता है। इल्म लेते लेते वो अपने आप को उन बादलों की तरह के जो समंदरों से ऊपर उठकर एक ऐसे रुई के गालों की शक्ल में होते हैं, लेकिन वो बादल वहीं नहीं बरस जाते। अगर वो बादल अपने ही जगह पे बरसे तो समंदरों पे ही बारिशें हो जाएं और फ्लडिंग हो। अल्लाह उनको कभी खुश्क जगहों पे ले जाता है, कभी सहराओं में, कभी थार में, कभी इधर कभी उधर ले जाता है, तो बादल बनी है। लोग कहते हैं कि हम क्यों जाएं, लोग आए दीन सीखने। और जी, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आता। थोड़ा इल्म होना तो ये मिसाल बड़ी अच्छी लगती है। चलो भाई, आओ तो पढ़ेंगे, और तकब्बुर भरी जुबान ने रौनत ऐसी है कि अल्लाह रहम करे जुबान से ही दिल कट जाए, छुरी की तो जरूरत ही नहीं। लेकिन आपको मैं एक पैगाम दे रही हूँ, ये मेरी अपनी जिंदगी का स्लोगन है, क्या आप कुआं क्यों बनते हैं, आप बादल बनिए। आप भी इल्म ले रहे हैं ना इस वक्त, लेते रहिए लेते रहिए। देने वालों को पता होता है कि आपको और क्या देना है, उनको अपनी पिछली जरूरतें भी पता है, आपकी अगली भी पता है, आपको भी और क्या स्किल्स देनी है, अभी आपने और क्या क्या खूबियां लेनी है। आप लेते रहे, और उसके बाद देखिएगा जब आपको मुर्दा जमीनों की तरफ भेजा जाएगा, आपकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ जगहों पे लगती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारी एक मीटिंग थी, तो उसमें मैं ये नोट कर रही थी कि जमीन के मुख्तलिफ कोनों से लोग मौजूद थे। किसी के पास सुबह है तो शाम है, तो किसी की इफ्तारी है तो किसी की सहरी है। तो मैं कह रही थी कि अल्लाह ताला ये सिर्फ आप ही की शान है, आप कहाँ उठाकर हमें जोहराबाद ले गए? थल और उसके इर्द गिर्द आप देखे नूरपुर, जिनको नहीं पता वो जाकर तो देखे। मेरी आंखें 2 साल से उसकी गवाह हैं कि अल्लाह ने कुरान का पानी वहां कैसे पहुंचाया। और फिर जो फीडबैक्स आते हैं, हर एक्टिविटी, हर जुमला जो यहाँ बोला जाता है, अमूमन स्टूडेंट्स उसको पिक करते हैं और नोट करते हैं। दुआ दिया करें कि अल्लाह हमें भी वो बर्तन बना के जो इल्म के मोती लेकर उसको जेम्स बनाकर दुनिया में बरसाएं, तो बारिश बनी है। क्यों एक चीज से अटक कर रह गए? लीजिए एक जगह, दीजिए हर जगह, ये कसूल बना ले जिंदगी का, तो ये डबलिंग नहीं होगी। देखिए ना, मैं एक मिसाल दे दूं कि मासियां हैं, एक मासी है बेचारी एक ही घर की है, सुबह से शाम तक उधर ही काम करती है। बाजी को पता है कि इसको सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय और रस दिए थे, अब 12 बजे इसको भी भूख लगी होगी, मुझे भी लगी है, खिलाएगी ना खाना, फिर रात का खाना, फिर गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े। आज लॉकडाउन आ गया, उस मासी के घर में राशन पहले भेजेगी बाजी, फिर अपने घर में लाएगी, क्योंकि उसको पता है ये बेचारी और कहाँ जाएगी। खाने के वक्त पे खाना, गर्मी सर्दी कपड़े, ईद सब मिलती होंगी। अब क्या हुआ, एक मासी इधर से उठी बेचारी, नाश्ता किया जल्दी जल्दी, घर से गई जो भी है, चाय पी कुछ भी, गई उधर गई, काम काम काम, अगले घर जाने की फिक्र है, ये कहेगी वो घर से खाई होगी, भुकी रही। अगले घर में जाएगी, एक तो डांट खाएगी क्योंकि पिछली को ओवर टाइम दे दिया, तो उससे नाराजगी ले ली। अब उसके बाद क्या हुआ, उधर गई तो वो कहेगी पीछे से खाई होगी, सारा दिन भूखी काम करके घर आएंगी, क्योंकि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। याद रखिए, एक दर दर फिरने वाले को नहीं मिलता। बिल्कुल इल्म का मिजाज भी यही है, ये चस्का होता है, वो आप अपना जैसे पूरा करें, कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन अगर आप वाकई एक प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं तो पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तजुर्बे करने वाले, ट्रायल एंड एरर वाले, बार बार घूम फिर के उन्हीं चीजों पर रहते हैं और मलकुल मौत का आने का वक्त हो जाता है। तो ये बात मैंने इसलिए की है कि अब इसके बाद दिलों की बातें हैं, वो दिल जिनके ऊपर शैतान का कब्जा नहीं होता, वो हिदायत का पैगाम मिलते ही फौरन लब्बैक कहते हैं, और इसके बरक्स वो जिनके दिल नकीदा बन जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, यहां से बाज़ाब्ता तौर पे सूरत अल अराफ में पहली दफा स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स, कसस उल अंबिया शुरू हो रहे हैं। कहीं कसस का अंदाज होता है और कहीं अनबा का अंदाज होता है। तो अल्लाह ने नबी भेजे कौमों के पास, लेकिन कौमों ने उसके साथ क्या किया, आइए आप एक गो में सुनिए और आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये आपका मेरा स्टोरी टाइम है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। और जो साफ सुथरी जमीन होती है, इसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो खराब है, इसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। इस तरह हम दलाइल को तरह तरह से बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र करते हैं। हमारे दिल जमीन की तरह है, जब दिल पर वही का पानी पड़ता है, जैसे इस वक्त मेरे और आपके दिल पे पड़ रहा है, तो याद रखिए सिर्फ उन्हीं दिलों से फसलें उगेंगी, हिदायत के पौधे उगेंगे, जिनके दिल जरखेज होते हैं, और जिनके दिल नकीदा बंजर खोखले और उजड़, तो याद रखिए कि उनसे खैर कुरान पढ़कर भी नहीं निकलती, वो बस इसको सुन रहे होते हैं और बस उनके दिमाग दिल जो वो इसी तरह से चल रहे होते हैं। तो यहाँ से कौमे नूह का तस्कर है, आप इस आयत को हाईलाइट कर लीजिए जो अभी हमने पढ़ी है 58, पूरे अंबिया कराम के किस्सों में ये आयत आपके सामने रहे कि वक्त का नबी ही क्यों ना आ जाए आपको पढ़ाने, अगर आपके अपने अंदर तलब नहीं, इरादा नहीं, हिदायत की सच्ची ख्वाहिश नहीं, तो आपसे कोई फसल नहीं उगेगी। और आप नबी छोड़ दीजिए, आप देखिए कि आज किताब आपके मेरे हाथ में, तो आप याद रखिए कि सिर्फ किताब पढ़कर हर बंदा हिदायत वाला नहीं होता। और ये ना सोचिए कि कोई नरम मसले बयान करता है उसको बहुत लोग सुनेंगे, और जो सख्त बोलता है उसका नहीं सुनेंगे। असल में देखिए, देने वाला तो पूरे दिल से देता है, जैसे कि हजरत नूह का किस्सा आने लगा है। 950 साल तक इस अल्लाह के बंदे ने लोगों को अल्लाह से जोड़ा, लेकिन रिस्पॉन्स क्या मिला अपने पे लेके सोचिएगा। आप पहली दफा दर्स देने गई, बड़ी तैयारी की, वहां जाकर देखा अव्वल तो आई कोई नहीं, आए भी 8-10, बीच में टोक दिया, और वो जुमले बोल दिए जो हजरत नूह को सुनने पड़े, जो हम आगे सूरत नूह तक सुनते जाएंगे इंशाल्लाह। तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, आप कहेंगे कल से मैं नहीं जाऊंगी, और कोई कहते चुप करो कल की बच्ची हमें दर्स देने आ गई, हम तो बड़े बड़े उलमाए कराम को सुनते हैं, हम तुम्हारी बात सुने। तो जरा से इस सारे सिनेरियो में अब सुनिएगा। لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله, पैगाम देखिए नबी का, या कौम बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल ही नहीं। इसको प्यार से हाईलाइट कर लीजिए, मुझे तो इस जुमले पे प्यार आ रहा है, इसके सिवा तुम्हारा माबूद होने के काबिल कोई है ही नहीं। सच है कि झूठ, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। सिर्फ इस एक जुमले पे यहां गौर कर लीजिए, क्योंकि यही जुमला बाकी अंबिया कराम भी बोलेंगे। तो देखिए अंबिया कराम का पैगाम कितना वाज़े, इबादत रब की, माबूद वो है सिर्फ, और आखिरत के दिन की पकड़ का अंदेशा। ये बातें अगर आप शुरू के दिनों में लोगों से शेयर कर लेना, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरी बात है कि लोगों के दिल खुल जाएंगे। लेकिन कौम का जवाब देखिए, इनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा कि हम तुमको सिर्फ गलती में देखते हैं। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम, मुझ में तो जरा सी भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। कॉन्फिडेंस देखिए, यानी जब आप माशरे के रिवाज रस्मों से मुख्तलिफ कोई बात करेंगे तो लोग आपको भी कहेंगे, नहीं नहीं आप अकीदा खराब कर रही हैं, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता। तो आपने ना उलझना है ना झगड़ना है, हाँ एतमाद रखिए, यस आई एम फाइन। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ, ये भी नोट कीजिए। कभी दाई दीन बनकर अपने पैगाम ना दे, अपने दिल के फफोले ना खोले, अपने ग्रजिस ना खोलिए, पैगाम रब का देना है। और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से इन उमूर की खबर रखता हूँ जिनकी तुमको खबर ही नहीं। आखिरत में तुम्हारे साथ कल होने क्या वाला है, यकीन कीजिए आज अगर ये पता लग जाए ना तो हम सीधे हो जाएं। अल्लाह के नबी ने बिल्कुल इससे मिलते हुए जुमले कहे कि अगर तुम्हें पता लग जाए कि मुर्दों के साथ कब्र में जाने के बाद होता क्या, तो मुर्दों को दफनाना छोड़ दो। ये तो मस्ती, इसलिए ये खुतुबाती शैतान पे इसीलिए चल रहे हैं कि अभी वो वक्त देखा नहीं है। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत हो जो तुम्हारी ही जिंस का, यानी कहते थे बशर की बात क्यों माने, कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए, सो वो लोग इनको छुटलाते ही रहे। कानू माजी इस्तमरारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और जो इनके साथ थे कश्ती में बचा लिया। याद रखिए हमारा दीन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, एफर्ट्स ओरिएंटेड है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना वक्त काम किया, अल्लाह उनकी कोशिशों को देखेगा। रिजल्ट्स को देखें तो फिर हजरत नूह तो कोई कामयाब होते हुए दिखते नहीं है। तो कभी ना देखा करें कैन क्या हो रहा है। आप हेड काउंट में पड़ गए तो कभी मुबल्लिग नहीं बनेंगे, आप तो हक नहीं कह सकेंगे। अपने ही बारे में कॉन्शियस रहने वाले लोग कभी अच्छे मुबल्लिग नहीं बनते। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था, इनको हमने गर्क कर दिया, बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। यहाँ कॉमन अमीन क्यों आया, ख्वाहिशों में अंधे, यानी कि आंखें अंधी थी, दिल अंधे हो चुके थे उनके। और इसके बाद यही सुन्नत फिर एक और कौम में आएगी। लेकिन देखिएगा आयात 46 से 64 के थीम्स, असाबे आराफ का तस्करा भी हमने सुना, अहले जन्नत की अहले जहन्नम से गुफ्तगू सुनी। हकीकी रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, हमें इसका यकीन था, बौर पुख्ता हो गया। दुआ के अदाब सीखे और कौम नूह की दास्तान सीखी, और बारिश में हिदायत का सामान था, इसको हमने अपने दिलों पर लगा कर देखा। अब दूसरी कौम, और ये तरतीब जमानी है, यानी ऑर्डरली चल रही है, कि पहले हजरत नूह थे और उनके बाद जो कौम के बचे हुए लोग थे उसमें से एक कौम उठी जिसको कौम आद कहते हैं। वहीला आद नखाहुम हूदन, और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया मेरी कौम, नबियों का अंदाज नोट कीजिए मोहब्बत का, ओ माई सिस्टर ओ माई ब्रदर। कौमें झुटलाने का हक अदा करती थी और नबी प्यार और मोहब्बत का हक अदा करते थे। पैगाम वही है जो हजरत नूह का था, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, सो क्या तुम नहीं डरते। देखिए सच बोलने वाला कभी अपनी जात से आपको नहीं जोड़ेगा। अंबिया कराम में शख्सियत परस्ती नहीं थी, सेल्फ प्रेजिंग नहीं थी, वो लोगों को अल्लाह से जोड़ते थे। आज भी ये मियार ले लीजिए, आपके से 101 ऑप्शंस हैं, लोगों को सुनने की, लोगों से फायदा उठाने की, एक मियार रख लीजिए। ग्रामर किसकी अच्छी, तजवीद किसकी अच्छी नहीं, किसकी बात के बाद अल्लाह से जुड़ती हूँ और अपने गुनाहों से डरती हूँ, शैतान से दूर होती हूँ, उसको चूज कर लीजिए। आपको हिदायत मिल जाएगी, चाहे वो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर ना भी हो। उसकी बात से इनकी कौम में जो बड़े लोग काफिर थे, उन्होंने कहा हम तुमको कम अकली में देखते हैं। नोट कीजिएगा कम अकल किसको कहते हैं, कुरान का लफ्ज देखें, आपको मुझे कोई कह दे आप तो बड़ी सफाहत वाली लगती हैं, आप कुछ बेवकूफ सी लगती हैं, हम तो रोते धोते अपनी किताबें उठा के घर आएंगे, आज के बाद मैं दर्स नहीं दूंगी। नहीं, ये आपको बातें सुननी पड़ेंगी अगर आप संजीदा हैं इस दावत में। और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में समझते हैं, हम तो कहते हैं बड़ा मजा है, लोगों ने मेरी बड़ी तारीफें की, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, यहीं रुक जाएंगे अगर अभी से अपनी तारीफों के गुनगाने लग गए। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम, मुझ में तो जरा भी कम अकली नहीं, लेकिन मैं परवरदिगारे आलम का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ, और देखो मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। एक एक जुमले में क्लैरिटी है। नबी का अकीदा देख लीजिए, नबी का तबलीग का अंदाज देख लीजिए, बस इसको अपना लें, दूसरों को छोड़ दें। अंबिया कराम से ज्यादा अच्छी बात कौन करता होगा? और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत हो जो तुम्हारी ही जिन्स का है? कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए, और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया, पहली कौम के बचे हुए लोग अगली कौम के बिगड़े हुए लोगों में ढल गए। ऐसे ही होता है, हिदायत के सोर्स से जब दूरी होती है ना शम्मा से दूरी की तरह, तो अंधेरे बढ़ते हैं। तो ये वहां बचे थे लेकिन इनकी नस्लों में फिर बिगाड़ आ गया, और डेल डोल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुमको फलाह हो। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास इस वास्ते से आए हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें। ये नोट कीजिए, कौमों का एटीट्यूड जो होता है सिर्फ अल्लाह की, हाँ, हम अल्लाह की करेंगे, जुमे को हम, सैटरडे को करेंगे, हम संडे को करेंगे, बस इससे ज्यादा ना प्लीज हमें डिस्टर्ब करें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी से जरा अलग और दूर रखना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर मामले में इंटरफेयर क्यों करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो कहा क्या सिर्फ हम अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे इनको छोड़ दें? देखिए आज क्या मसला है, यही मसला है मुशरिक का शिर्क छोड़ते हुए, यही मसला है मुनकिर का इनकार छोड़ते हुए, और बिगड़े हुए मुसलमान का भी आज यही मसला है। बस हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। खुद अपने मुंह से अजाब मांग रहे हैं। बाज दफा इंसान जुबान ने काल से और बाज दफा जुबान ने हाल से ये अजाब मांगता है। उन्होंने फरमाया बस अब तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब और गजब आया ही चाहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ठहरा लिया, और इनके माबूद होने की कोई दलील नहीं भेजी अल्लाह ने? सो तुम मुंतजिर रहो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। गरज हमने इनको और इनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया। ये लोग बचेंगे एंड पे जिनको लोग बातें करते थे, और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। तो क्या पता चला कि वही नबी का पैगाम और वही कौम का रिस्पांस। अमूमन हक बात कहने वालों को इसी किस्म के रिस्पांस मिलते थे। अब आगे एक तीसरी कौम जो कौम आद ही के बचे हुए लोगों की नस्ल से पैदा हुई, कौम सालेह, उनका तस्करा है। वइला समूद अखाहुम सालेहा, और हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़े दलील आ चुकी है, ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाती फिरे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना कि कहीं तुमको दर्दनाक अजाब आ पकड़े। तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया। हम भी शायद को सुनते वक्त जरा अपने चंद खानदान के बुजुर्गों को सोचे, नाना को, दादा को, ससुर को, सास को, कितने नेक होते थे वो, लेकिन आज क्या उन्हीं की नस्लों में बिगाड़ तो नहीं आने लग गया? और तुमको जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नरम जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है? देखिए डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, शक डाल रहे हैं लोगों के दिलों में सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं। आर यू सीरियस रियली? उन्होंने कहा बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो इनको देकर भेजा गया। वो मतकबिर लोग कहने लगे तुम जिस बात पर यकीन लाए हो हम तो इनके मुनकरीन है। याद रखिए दौलत वालों में तकबर आता है ना तो उनको अल्लाह की बात भी समझ नहीं आती। बस उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ऐ साले जिसकी आप हमको धमकी देते थे, इसको मंगवाइए अगर आप पैगंबर हैं। हर नबी के सामने जो लोग थे उन्होंने खुद अजाब के मुतालबे किए। बस दफा आज भी मुसलमान कुछ ऐसे तौर तरीके अख्तियार करते हैं, दूसरे लफ्जों में यही कहते हैं कि हम तो अपनी करनी पे हैं, अब अल्लाह ने जो करना है फिर कर ले। तो जुबान से भी और हाल से भी लोग बस दफा अल्लाह तला के अजाब मांगते हैं। तो वही हुआ जो चाहिए था, बस इनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। वो घर जो अल्लाह के लिए निकलने नहीं देते थे, वो घर जो किताब के लिए नहीं निकलने देते थे, और उसी की देखभाल और टेक केयर में पड़े रहे। अल्लाह ने कहा पड़े रहो अब इन्हीं घरों में। याद रखिए कि हिदायत दिल के दरवाजे के रास्ते आती है, बड़े घरों के रास्तों में नहीं। आज भी यही हो रहा है, कौमें जब अपने घरों को पूजने लग जाएं और घर उनके किबले और काबे बन जाएं, तो फिर अल्लाह तआला ऐसे झटके देता है जो शायद आजकल भी हों। इस वक्त जिनको घर में रहना बुरा लग रहा है, वो नियतें करें, तौबा करें कि दीन के लिए, नमाजों के लिए, इबादत के लिए, इबलाग के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह तआला घरों से। कौम का ये स्टबननेस होना, उस कौम की ये ढिटाई कह लीजिए, और अब इसके जवाब में ज़रा हज़रत सालेह का एक किस्म का दर्द महसूस कीजिए। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़ कर चले गए। हर नबी को अल्लाह ने ऐसा ही फिर हुक्म दिया, हिजरत करते हैं और फरमाने लगे मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। ये बातें आज भी एक सच्चे दाईये दीन के दिल से निकलती हैं, जब लोग उसकी कदर नहीं करते और वो उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह का रुख करता। कि तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो मैं तुम्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पढ़ो घरों में, पढ़े रहो, आराम फरमाओ, मौज करो, मस्ती करो, देखते हैं तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या अवार्ड देते हैं, कि तुम्हारे हाथ में तुम्हें वो अवार्ड दे दें कि जिसको लेकर तुम असहाबुल यमीन से ऊपर उठकर साबिकून अलवलून में चले जाओ। आहिस्ता आहिस्ता नमाजें भी वक्त से बेवक्त होने लगती हैं अगर हिदायत का पानी ना मिले। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फुहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो, यानी लस्ट का शिकार हो, होमोसेक्सुअल हो, औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद ही से गुजर गए हो। और इनकी कौम से कुछ जवाब ना बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। कौमे लूत का वो फितना जो आज के दौर का बहुत बड़ा फितना, यानी ये वो लोग हैं जो अल्लाह की फितरत के निज़ाम को तोड़ना चाहते हैं। पहले होमोसेक्सुअल थे, अब लेस्बियन बन गए, और इसके बाद न जाने और क्या कुछ जानवरों के साथ मुकाला करने का इरादा। याद रखिएगा कि लोग बेहयाई के लिए प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं कि खबरदार हमारे खिलाफ कुछ कहा, तो क्या आप नेकियों के लिए नहीं बना सकते? और हर नबी के साथ देखिए एक फितना जुड़ा हुआ है, हम मुसलमानों में आज ये सारे फितने आ गए, अल्लाह हमें बचा ले। सो हमने लूत अलैहिस्सलाम को और इनके घर वालों को बचा लिया सिवाय इनकी बीवी के, कि वो इन लोगों ही में रही जो अजाब में रह के। बीवी की हमदर्दियां अपने खानदान से थी, इसलिए शौहर के साथ रहकर भी उसके मिशन की राही ना बन सकी। और हमने इन पर खास तरह का मीह बरसाया, यानी पत्थरों की बारिश। बस देखो तो सही इन मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। अल्लाह ताला आज हमारी नस्लों को भी आने वाले फितने से बचा के रखे कि जिसमें नस्लों की नस्लें बह भी रही हैं और आगे जाकर न जाने क्या होगा, ना अक्ल में आने वाली बात न शक्ल में। सहाबा किराम कहते थे अगर कुरान पाक में कौम लूत के नाते से ये अमल बयान ना किया जाता तो हम कभी ना मानते कि ये मुमकिन भी है। और आज ये प्लेग की तरह फैला हुआ है। हमें कोरोना वायरस तो बुरा लगता ही है, वो होगा भी, लेकिन याद रखिए होमोसेक्सुअलिटी इससे बहुत बड़ा फितना है। तो लिखिए कि होमोसेक्सुअल या लेस्बियंस शैतान के कदमों पे चलते हैं, उसके नक्शे कदम पे चलते हुए तो इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर भी वो काम नहीं करते जो इंसान से कराया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इसके आगे भी बन बांधने वाला बनाए। अब एक और नबी जिनका जिक्र इधर शुरू होगा और नवे पारे में चलता जाएगा, और वो हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। माली बिगाड़, इकोनॉमिकल डिसऑर्डर्स, और इसी तरह से बिजनेस एथिक्स सिखाई जाएंगी। इसमें माली मामलात को भी अल्लाह ही के हुक्मों पे चलाना है। कैसे? वइलामत शनाखाहुम शुएबा, और हमने मदियन की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, बस तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीजें कम करके मत दो। नोट कीजिए, ना नाप तोल में कमी करनी देते लेते वक्त चीजों में, और ना रिश्तों में, और ना हकूक में, ना फराइज में। जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। आपसे सवाल होगा एक एक बात का, क्योंकि आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके इर्द गिर्द वालों को। याद रखिए, जब जिम्मेदारान गैर जिम्मेदार बन जाएं, तो इसका नुकसान पूरे इलाके को होता है। और वह जमीन में इसके बाद कि इसकी दुरुस्ती कर दी गई, फसाद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नाफे है अगर तुम तस्दीक करो। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और इसमें कजी तलाश करने में लगे रहो, यानी तुम्हारे मोटिव्स कितने बुरे हैं कि जिसको लेकर चलते हो। और इस हालत को याद करो जब तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझे भेजा गया ईमान ले आए और कुछ ईमान नहीं लाए, तो जरा ठहर जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला किए देता है, और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। और अल्लाह का फैसला ऐसे वक्त में क्या होता है? ऐसा दर्द खींचने वाला इंसान वो शुएब अलैहिस्सलाम था या कोई और, अल्लाह उसको उन लोगों से दूर कर देता, क्योंकि वो उसकी कदर नहीं करते। अल्लाह ने अंबिया कराम को कभी जाया नहीं किया। जिसमें खैर होती है ना, अल्लाह उससे काम ले लेता। एक जगह के लोग नहीं लेंगे, अल्लाह उसको दूसरी जगह ले जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि महरूमी उसकी है कि जिसको कोई जिम्मेदारी मिले और वो उसके ऊपर अपने आप को दिल जान के साथ खपा ना दे। तो ये था पारा नंबर 8, चंद जेम्स सुनहरे हरूफ। जुखरुफ अल कौली वाली बात से बात शुरू हुई थी कि दुनिया में आज हर तरफ बातों का जाल है। मीडिया को खोल लीजिए या आप इंसानी दुनिया में रहिए, बातें बातें बातें, हर एक बोल रहा है, हर एक एंकर बना हुआ है, हर एक अपनी राय दे रहा है, और खुद को थिंक टैंक बनाने वाला और समझने वाला। और ऐसे ही लोग हैं जो असल में इंसानों को फिर याद रखिए कि मुश्किल हालात में डाल देते हैं और मुश्किलात में फंसा देते हैं। और ऐसे ही वो लोग हैं कि जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं होता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो दूसरी चीज हमने देखी वो क्या थी? नमाज, कुर्बानी, जीना मरना सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर मकायदे शयातीन से बहुत हद तक वाकफियत हो गई। तकवा और शरीयत की पाबंदी करने का हुक्म लिया हमने इस बारे में। शरह सदर क्या होता है और दयीक़ सदर क्या है, और दारुस्सलाम क्या है जिसकी तरफ अल्लाह बुलाता है। और फिर हमने लिबास पे थोड़ी सी बात की, और आखिर में अम्बिया कराम के किस्सों में देखा कि अक्सरियत और ख्वाहिशात की पैरवी से गुरेज करना है, हक पे थोड़े ही क्यों ना हो उनका साथ दीजिए, हक वाली कश्तियां बच जाती हैं और बातिल वाले लोग दरियाओं और समंदरों की लहरों में भी बह जाते हैं और वक्त की लहरों में। अल्लाह का वादा है, हैया लस्सला हैया लल्फला, उस पे नजर रखिए। जब नमाज का वक्त आए तो नमाज, जब नेकी और फलाह का कोई हुक्म तो उस पे। और याद रखिए, न कैद शैतानी का न दईफा, सूरह निसा 76। बेशक शैतान का जाल बड़ा ही कमजोर है, बोदा है, लगता बहुत है शैतान बाहर फैल रहा है, लेकिन एक फूक मारे दुबक के बैठ जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हक की फूकों से हम शैतान और उसके सारे मकर दूर करें और खुतुवाती शैतान पे ना चलें। चूंकि पारे का थीम खुतुवाती शैतान था, तो फिर हमने इस बारे में जो चीज़ देखी, तो उसमें से एक चीज़ नोट कीजिएगा कि किन लोगों पर शैतान का दाव नहीं चलता। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सूरह सवाफात 40 में आता है, मगर जो बंदे अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। तो आपने मैंने अगर अपने आप को शैतान से बचाना है तो मुखलस बनना पड़ेगा। शैतानी वार से बचने वाले तीन किस्म के लोग, ईमान वाले, शुक्रगुजार और मुखलसीन। अल्लाह हमें इन्हीं तीनों में रखे। फितने का हल ले लीजिए, यानी खुतुवाती शैतान से बचने के लिए, शैतान की पैरवी से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले ये कि शैतान अब्दी दुश्मन है, इसके वजूद और फितने का एहसास हर वक्त अपने अंदर रखिए, और खुशनुमा बातों को और दीगर शैतान के मकायद का इल्म हासिल करना जरूरी है। शैतान के मकायद से मरूब नहीं होना, अल्लाह पर तवक्कुल करना है। इस फितने के खिलाफ सब्र और बर्दाश्त करते हुए तकवा की कुव्वत से मुकाबला करना है। बुराइयों की तह उतार कर इनकी कशिश को कम करना है, यानी आज क्या करें, डी ग्लैमराइज द सिंस, ये जो ऊपर एक गोल्ड वनीर चढ़ा हुआ है ना, बुराइयों पर नाम है, स्लोगन्स हैं, और टेढ़े टेढ़े मुंह के साथ लोग उन चीजों का जिक्र करते हैं, आप जरा अंदर से उस बुराई की गंदगी दिखा दीजिए तो देखिए कभी कोई दुनिया में बुराई करे ना। पिछली जिंदगी पर तौबा इस्तगफार और आइंदा शरीयत पर अमल करने के लिए दुआएं मांगनी है। सारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए कुरान और सुन्नत को आम करना है। बोलिए इंशाल्लाह। इसी तरह खुशनुमा बातों के फितनों से मुतासिरा लोगों की सोच तब्दील करने के लिए उनको हिकमत से तबलीग करनी है कि अल्लाह की मर्जी माननी पड़ेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं। इसी तरह इस्लामी शरीयत की हिकमतें और फवायद और इस्लाम के बेहतरीन पुरसुकून खानदानी निज़ाम का इल्म लोगों को देना है। शैतान और दुश्मनान इस्लाम की तमाम साजिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना, दीन की असल शक्ल पेश करने के लिए और दूसरों को जमाने के लिए उलमा, हुकूमत और मुखलस मुसलमानों को कुरान और हदीस से जिहाद करना है, और इनफरादी और माशरती तहारत और पाकिजगी और सबसे बढ़ के रिस्क के हलाल का अहतमाम करना है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला और जानने वाला है, और हम पर अपनी रहमत और मगफरत की नज़र फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। आइए देखते हैं कि इस पारे में आपके मेरे लिए क्या कुछ खजाने रखे हुए हैं। पारे का नाम है कालल मलऊ। पहला ही लफ्ज़ है, कौम शुएब के सरदार यानी इन लीड्स इन्फ्लुएंशियल बड़े लोगों का जो रिएक्शन था उससे ये पारा शुरू होता है, आयत नंबर 88 सूरत अल आराफ से। इस पारे का मेन थीम समझिए, बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, पूरा पारा इस वक्त में सम अप होता है, इसीलिए इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बाद में तर्जमे को बार बार रोक कर बात करना मुश्किल भी है और मुमकिन भी नहीं है। तो टॉपिक है इस पारे का, सबीलुर रुश्द को छोड़ने का फितना, जिसको आप सूरत फातिहा में सिरातल मुस्तकीम कहते हैं ना, बस उसको समझ लीजिए, सिराते मुस्तकीम को छोड़ने का फितना। और अमूमन इसमें चार चीज़ें हमारे सामने होती हैं, इल्म आने के बाद भी हम रुश्द से गई पर चले जाते हैं, इसी तरह माल कमाने के अंदाज में, जैसा कि बिल्कुल पारे के शुरू में ही हम देखेंगे कि किस तरीके से लोग यानी अल्लाह ताला की बताई हुई पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करते और सिर्फ डंडी मार कर नापतोल में कमी बेशी करके ही इधर से उधर चले जाते हैं। फिर इसी तरह से वादे अलस का जिक्र इस पारे में कि कैसे उसको तोड़ते हैं और अपने आप को बिगाड़ते हैं। और एक चौथी चीज़ जो बहुत बड़ा एक सबब बनती है अपनी बात को दूसरी तरफ लेने की, वो हमारी औलाद है। ज़रा सा एक मैप देखिएगा, उससे आपको ये पारा समझ आएगा, लेकिन उससे पहले आयत नोट कर लीजिए। पारे का मरकजी ख्याल इस आयत 146 से लिया गया है, सौसरिफ वन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक वहीं यरो कुल्ला यतिल्ला यूमिनू बिहा। जरा सा आप मुतवज्जो हो जाइए, फिर अगला हिस्सा पढ़ूंगी। वहीं यरो सबीला रुश्ती ला यत्तखिजू हु सबीला, वहीं यरो सबीला गई यत्तखिजू हु सबीला। वजह ज़ालिका बी अन्नहुम कज़्ज़बू बी आयातिना वकानू अन्हा गाफिलीन। मैं अपनी निशानियों से इन लोगों की निगाहें फेर दूंगा, यहाँ निशानियों से मुराद कुरान और कुरान की आयतें हैं, जो बगैर किसी हक के ज़मीन में बड़े बनते हैं। वो ख्वा कोई निशानी यानी आयत देख ले, मतलब निशानी देख ले से मुराद कुरान की कितनी ही आयतें क्यों ना पढ़ लें, कभी इस पर ईमान न लाएंगे। अगर सीधा रास्ता इनके सामने आए तो इसे इख्तियार ना करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो इस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और इनसे बेपरवाही करते रहे। तो इस आयत में आपने दो लफ्ज़ देखे हैं, सबील अर रुश्त और सबील अल गई। हकीकत यह है कि ये दो रास्ते हमारी ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं। कभी आप किसी से सवाल करें कि सिराते मुस्तकीम कैसी है, तो लोग कहेंगे सीधी चमकती हुई, बस इधर से आपने गाड़ी डाली और उधर जन्नत, सबील उल जन्ना का दूसरा नाम ही असल में ये है वो है। लेकिन आपको भी इस आयत की रोशनी में दिखाना चाहूंगी कि सबीलुर रुश्त है क्या। देखिए आप लफ्ज़ चूंकि नया है ना रुश्त, तो इसको आप मुस्तकीम के, मैं आसानी के लिए दो लफ्ज़ बोलती हूँ, सिराते मुस्तकीम और सिराते गई क्या है। यानी हमारा एक खामखा का एक अंदाज होता है, हम क्या सोचते हैं कि ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं, कुछ लोग राइट साइड पे जा रहे हैं और उधर जन्नत लिखी हुई है, और कुछ लोग उसके साथ ही एक पैरेलल लाइन है जिस पे चढ़ गए और वो जहन्नुम में पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखिए जरा, सबीलुर रुश्त और सबीलुल गई दो राहें हैं, दो मंजिलें हैं। पहला शख्स जो सबीलुर रुश्त और सबीलुल गई के दोराहे पे पहुंचता है तो रास्ते की आजमाइशों और सख्तियों से घबरा कर अपना रास्ता बदल लेता है और अनजाने में ही वो सबीलुल गई पर चढ़ जाता है। इसकी मिसालें हम पढ़ेंगे। यदि आप कहें कि इंसान हिदायत के सफर पे चलते चलते क्रिस क्रॉस होता है गुमराही के रास्ते से, आप और मैं इंसानों की जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं है कि नेक लोगों की एक बस्ती है और एक बद लोगों की बस्ती है, नेक लोग एक रास्ते पे चल रहे हैं और बद लोग दूसरे पे, फिर तो कभी इस्लाह ना हो, फिर तो सभी महफूज है नेकियां करके। हर लम्हे आप और मैं आजमाए जा रहे हैं। एक जुमला लिखिए, हिदायत और गुमराही पैरेलल नहीं क्रिस क्रॉस है। पैरेलल होती तो बिल्कुल आपकी मेरी रोड जिसको आप और मैं अपने सामने रखते हैं, जहां गाड़ी चलाते हुए देख लीजिए, ये राइट साइड पे जाने वाली रोड है, ये लेफ्ट वाली रोड है, ये राइट, और गलत करें तो कितना नुकसान हो। अगर आप गाड़ी पे चढ़ते हुए एग्जिट को एंटर और एंटर को एग्जिट समझें तो कितना बड़ा क्लूजन होगा। इससे बड़े क्लूजन उस वक्त होते हैं जब हम सबीलुर रुश्त पे चलते चलते एकदम किसी दोराहे पे आ जाते हैं। दोराहे को आप चुरंगी कह लीजिए, आप इसको राउंड अबाउट कह लीजिए, रुन शुरिंग कह लीजिए, हर इंसान की जिंदगी में मौके आते हैं। मसलन अगर आप अपनी नजरें जमा कर देखें तो एक शख्स जो रेड लाइन पे है, हिदायत के रास्ते पे आया, लेकिन एन बिटवीन एक राउंड अबाउट आ गया जहां गुमराही उसके सामने मुंह खोले देख रही थी। इस वक्त उसके लिए बड़ी आजमाइश का ये वक्त होता है कि हक के रास्ते पे चलते हुए, किसी नेकी के काम में चलते हुए, हलाल कमाते हुए, अल्लाह के हुक्मों को मानते मानते एकदम जिंदगी में कोई टर्न आ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, और वो सीधा जाएगा तो वो इसी रास्ते पे रहेगा, लेकिन अगर लेफ्ट साइड ले लेगा तो वो एंड पे देखिए ग्रीन रास्ते पे चलेगा। अब वो शख्स ग्रीन रास्ते पे जब चढ़ गया तो एंड देखिए जहन्नुम है ना, तो वही शख्स अपनी जिंदगी में अपना रास्ता बदलने का मौका पाता है, लेकिन महज लापरवाही की वजह से गैर शौरी तौर पर सबीलुल गई पर ही अपना सफर रखता है। बिल्कुल हिदायत के सफर पे, नेकियों के सफर पे चलते हुए जब लोग गैर महफूज हैं कि देखो किसी लम्हे छोड़ दोगे, बस आपने बड़े शौक से कुरान का कोर्स शुरू किया, रजिस्टर किया, पहले पारे के बीच में ही आए तो पाकिस्तान जाना पड़ गया, हज पे चले गए, बेबी पैदा हो गया, बच्चे बच्ची की शादी आ गई, ये आपका दोराहा है। ये जितने दोराहे हैं ना, इसको आपने अपनी जिंदगी में लाना है। मैं कब रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ चल पड़ती हूँ? और वही बचेगा जो ड्राइव केयरफुली के असूल पे होगा। अगर आप रेड लाइन के ऊपर चलने वाले और ग्रीन लाइन वाले को देखें तो आप खुद को लिखिए, मैं ग्रीन लाइन पे हूँ। ग्रीन सिग्नल होता है ना चलने वालों के लिए, चलते जाइए, बीच में आपको टेम्पटेशंस भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, बातें भी सुनने पड़ेंगी। वला नब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ वल जूई वनक्स मिनल अमवाली वल अनफुस वबशिर सबरीन। सब्र के साथ सर डाल के इस रस्ते के तकाजे पूरे करते रहे, जो ही आप वो राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे आप सिक्योर हैं। अब थोड़ी दूर आगे गए, कुछ महीने कुछ दिन के बाद एक और फितना आ गया, और उसके बाद आपने नहीं हटना, आप देखिएगा कि ग्रीन रोड के एंड पे जन्नत है। अब जिंदगी में कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन आ गया, अगर आप सर डालकर अपना काम कर रहे हैं तो इन दोराहों में से एक दोराहे के ऊपर कोरोना लिख लीजिए, एक पे लॉकडाउन लिख लिए, इंशाल्लाह इस आजमाइश में से वो सब साथी कामयाबी से गुजर जाएंगे जो हिदायत के रास्ते पे, जो खुद हिदायत ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, जो अमर बिल मारूफ भी कर रहे हैं, नहीं अनिल मुनकर भी कर रहे हैं, जो तकवा पे हैं भी और तकवा पे लाते भी हैं, जो हलाल कमाते थे वो हलाल कमाते रहेंगे, और इंशाल्लाह उनको ये वायरसेस और ये आजमाइशें तंग नहीं करेंगी। इसके बरक्स जरा सा रेड लाइन पे खड़े शख्स को देखिए, ये गुमराहियों में पड़ा हुआ था। हो सकता है शराबी भी हो, कबाबी भी हो, जानी भी हो, मुशरिक भी हो, मुनकर भी हो, एथियस भी हो सकता है। इसकी जिंदगी में दोराहा कब आता है? जब इसको कोई अच्छा दोस्त मिल गया, किसी ने इसको रास्ता दिखा दिया, कोई साथी थी, उन्होंने कहा इधर आओ मैं तुम्हें बताऊं, वहां कुरान पढ़ते हैं, चलो मेरे साथ। अब ये इसका टर्निंग पॉइंट हो सकता था। अगर सोचेगी समझेगी गौर करेगी या करेगा तो वो रेड लाइन को छोड़कर देखिएगा सीधा जाने की बजाय ग्रीन लाइन पे चलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसको पता भी नहीं चलेगा और इंशाल्लाह वो भी जन्नत में आ जाएगा। लेकिन अमूमन लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा कम ही उठाते हैं, बींग स्टबन, बींग पेरेंट्स। और उन्होंने कहा, और अब आप रस्ती, और हमारे तो ख़ानदान, और कभी जॉब बनती है बहाना, कभी कुछ, करते करते वो शख्स एंड तक जहन्नम में चला जाएगा। तो क्या पता चला सारी बात का एंड अप, कि हिदायत पे चलने वाला सब्र के साथ आजमाइशों पे चला रहे, दिल जमई के साथ रहे, मुस्तकिल मिजाजी रहे, तो अल्लाह की मदद और उसकी रहमत बहरहाल मिलेगी और हकीकी मंजिल जन्नत मिलेगी। इसके बरक्स गुमराहियों में पड़े हुए लोग, उनकी जिंदगी में भी बार बार बदलने के चांसेस आते हैं। कभी कोई दोस्त है ना, तो कभी कोई दुख, कोई बीमारी, अचानक बेटे का इंतकाल हो गया, जवान शौहर का इंतकाल हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई। अल्लाह ताला ये जो चल देता है ना थोड़ी सी वार्निंग्स, लअल्लहुम यतदर्रउन, पीछे पढ़ के आए हम लोग। अल्लाह मुश्किलात और आजमाइशें लाता है इसलिए कि जरा संभल जाओ, जहन्नुम से रास्ता बदल लो। और इस तरह से एक इंसान फिर जब बचते बचाते आगे आता है तो क्या होता है, आप देखिए कि सबीलुल रुश्द को छोड़कर सबीलुल गई पे इंसान जाता क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। और आप इस वक्त अगर ड्राइविंग करते हैं ना कभी, तो आप फिर मेरी इस एक एक बात को बिल्कुल मेरे से भी अच्छा समझेंगे। क्या चीजें हैं जो हमें हिदायत के रास्ते से उतार कर गुमराहियों के रास्ते पर डालती हैं। बस आप देखिए, माल, माल कमाते हुए, या इसमें जरा मिसालें देख लीजिए। कौम शुएब का मसला क्या था, माल, थोड़ा सा माल इधर से उधर करना उनको सबीलो रुश से निकाल कर गई पे ले गया। इसी वाकये में मसहाबे सब्त का किस्सा पढ़ने वाले हैं कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने की वजह से वो सबीलो रुश से उतरे तो गई पे चले गए। मनु सलवा का मुतालबा किया और उसके बाद उसके तकाजे ना पूरे किए तो गई पे चले गए। तो एक बहुत बड़ी वजह माल होती है। फिर इसी तरह से आप देखिए, औलाद, औलाद की खुशियां और औलाद को खुश रखने का शौक बहुत सारे लोगों को सबीलुर रुश्द को छोड़कर सबीलुल गई पे ले आता है। इसको तो 10 दफा बड़ा करके लिखेंगे ना, तो आप इस पे अपने दिल को जमा लीजिए। बहुत सारे लोगों को डी ट्रैक करने वाली चीजें औलाद होती हैं। मर्दों को माल, औरतों को औलाद, अमूमी तौर पे, और इल्ला माशाल्लाह। जितना ज्यादा आप इस चीज पे गौर करेंगे, आप खुद महसूस करके देखेंगे कि ये फितना हमारे इर्द गिर्द कितना है। बच्चों को पूजने नहीं लग जाना, उनको पालते पालते बच्चों की खुशी में इतने खुश हो गए कि अल्लाह को नाराज किया और कहते क्या करें बच्चे नहीं मानते। तो इसका जिक्र हम इंशाल्लाह इसी पारे में सूरत अनफाल की आयत 28 में पढ़ेंगे, अन्नमाम वालुकुम वाउलादुकुम फितना। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने इंसान को तौहीद पे पैदा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद में गुंदा हुआ, जिसको इस पारे की आयत 179 के अंदर और उसके साथ आगे देखेंगे कि इंसान वादे लस्त को भूलता है ना, तो लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हूना बिहा की कैफियत होती है। वहां पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। यहाँ सिर्फ हिंट्स लीजिए, आज जितने लोग तौहीद की राह छोड़कर नंबर एक कुफर की या शिर्क की राह पे चल रहे हैं, गोया कि वो सबील उल रुश्द को छोड़कर सबील उल गई में। इसमें एथियस भी आते हैं, एग्नोस्टिक्स भी आते हैं, मुनकिर भी आते हैं, मुशरिक भी आते हैं। अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़कर इंसानों और बुतों और मूर्तियों को पूजने वाले भी इसी में आते हैं। और हाल क्या होता है कि फिर बात नहीं समझ आती। कल्ब है, समझ कोई नहीं, कान है, समात कोई नहीं। और अल्लाह ताला ने इसके पहले बड़ी सख्त बात लिखी है, आप वहां जाएंगे तो खुद ही पढ़ लेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और तरीका है, और वो क्या है, इल्म। अल्लाह बास दफा इल्म देता है, प्योर इल्म, प्योर नॉलेज। वो इल्म उसको बहुत ऊपर ले जाता अगर वो उसके तकाजे पूरे करता, लेकिन बास दफा इल्म वाले के ऊपर शैतान इस तरह मुसल्लत होता है कि वो सबील उल रुश्द को छोड़कर सबील उल गई पे आता है। एक किरदार जिससे मुलाकात होगी इसी बारे में आराफ 176 में, वहां पढ़ेंगे, और कैफियत क्या आ जाती है, अखलदा इलल अर्दी, वो तो जमीन के साथ ही घुस गया, ऐसे चिपका कि मादा प्रस्त हुआ और मटीरियलिस्टिक हो गया। और आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं इल्म के बावजूद गुमराह हो गए। 70 सरदार गए थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पे, लेकिन वहां जाके मुतालबा कर दिया, ये उनका सबीलुल गई पे जाना था कि हम भी अल्लाह को देखेंगे वरना हम नहीं मानते। तो क्या पता चला कि ऐसे लोग सबीलुल गई पे आते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सबीलुल रुश छोड़कर जो गई पे आते हैं ना, वो अमूमन हीले बहाने बड़े करते हैं, असल में हमारी मजबूरी है ना, आप समझा करें प्लीज, आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है। ठीक है, अल्लाह करे समझे, समझने कहने वाले को समझना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा हीले बहानों से और सिर्फ खुद को मजबूर समझने से। बहुत सारे लोग हैं जो खुद को मजबूर समझते हैं, वो होते बिल्कुल नहीं है, माजरत है। बहुत सारे लोग खुद को बहुत भोला समझते हैं, वो भोले नहीं होते ना। इसी तरह अब वो हीले बहाने करते हैं, मेरी मजबूरी, मेरे हालात। तो देख लीजिए, इसका जिक्र आप इस बारे में सूरत अल अराफ 163 में पढ़ने वाले हैं। वाकई सब को डिटेल के साथ, यानी मछलियां पकड़ी और अल्लाह के हुक्म को तोड़ा मोड़ा और हीले और बहाने किए। तो आप पर मैं भी खुली जुरत तो नहीं पाते, लेकिन बहानों की आड़ में अल्लाह के हुक्म को पीछे करते हैं। फिर इस बारे में हम सभी लोग रुश्त से गई की मिसालें तो पढ़ रहे हैं, एक इंतहाई खूबसूरत मिसाल पढ़ेंगे। मैं पीछे जो था उसको जहन में ले आइए। सुर्ख रास्ते पे चलने वाला एक शख्स जिसकी जिंदगी में कुफर भी था और जोहल भी था, और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था याद कीजिए, कि जादूगर फिरौन के दौर के सुबह को जहन्नमी थे और चाश्त के वक्त जन्नती बन चुके थे। क्यों? कुफर भी था, लालच भी था और जादू भी था। तो गोया कि आपकी मेरी जुबान में वो जहन्नुम के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मोजजात को देखकर समझ गए ये जादू नहीं हो सकता। तो उनकी मिसाल लीजिए कि पहले ही राउंड अबाउट पे आए, दोराहे पे आए या चौराहे पे आए, और उसके साथ ही रास्ता बदला और ग्रीन लेन पे आ गए और अल्लाह ने उनको जन्नतें दे दी। आज भी हर वो बंदा जो तासुब से पाक होकर इस किताब को सुनेगा, उसके हिदायत में आने के इतने ही चांसेस हैं, इतने ही मौके हैं, और इतनी ही इंशाल्लाह उसकी उम्मीद है जितनी फिरौन के जादूगरों के आने की थी। तो आप कभी अपनी दोस्तों को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, अपनी औलाद को ना कीजिए, शौहर को ना कीजिए, ये हिदायत पे नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। आप मौका तो बनिए, आप हाथ थामिए, देखिएगा बार बार के चौराहों से किसी एक वक्त भी एक वक्त आएगा, सबीलुल गई को छोड़कर सबीलुल रुश्द पे आ जाएंगे। और इसी पारे में आप पढ़ेंगे कि जिहाद का इनकार करके बनी इसराइल सबीलुल गई पे आ गए। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, मानो सलवा की, उसका इनकार किया तो सबीलुल रुश्द उतरे तो गई पे आ गए। तो इंसानों की इस दुनिया में जिसमें मैं और आप हैं, ये हर लम्हे हो रहा है। फिरौन सबीलुल गई पे था, उसको कितने ही मौके मिले, मूसा ने कितनी बार उसको समझाया सुझाया, नहीं माना। और वलक जरान अली जहन्नमा, ये वो लोग हैं जिनको जिंदगी में इतने मौके मिले कि गई के रास्ते यानी सुर्ख लाइन से उतर कर सब्ज लाइन पे आ जाए, नहीं आ सके। फिर आगे इसी बारे में एंड पे पढ़ेंगे हम सूरत के एंड पे कि कैसे औलाद अल्लाह देता है, बाद में उसको जाके बाबों के नाम पे और गैरों के नाम पे मंसूब करते हैं, वो गई के रास्ते पे हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला आपको मुझे सबीलुर रुश्द पे रखे। कोशिश भी करेंगे और दुआ करेंगे, और इस पारे के मजमून की मुनासबत से जो दुआ आज हमारे सामने है, अल्लाहुम अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका वाग्निनी बि फदलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, तू हमें हलाल देकर हराम से किफायत कर दे, यानी हलाल इतना दे दे कि हराम लेना ही ना पड़े, और अपने फजल मुराद रिस्क माल और दौलत वगैरह से नवाज कर अपने सिवा किसी और से मांगने से बेनियाज कर दे। ए अल्लाह, अपना नियाजमंद रख और दूसरों से बेनियाज कर दे। ये तिर्मिजी की रिवायत है 3563। और आज की हदीस ले लीजिए, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, सिलसिला तो सहीहा की रिवायत 885। इज्तनिबुल कबाइर वसद्दिदु वबशिरु। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करो और राहे मुस्तकीम पर चलते रहो और लोगों को खुशखबरियां सुनाते रहो। मुझे उम्मीद है कि ये मैप जो मैं तकरीबन पिछले 7-8 साल से मुख्तलिफ तरह से पेश करती हूँ, आज भी बहुत सारे लोगों को सोचने पे मायल करेगा कि मैं क्यों अपने आप से मायूस हूँ, मैं क्यों गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, मैं निकल सकता हूँ। बस कोई ऐसा हाथ ढूंढिए जो आपको सबीलुल गई से उतार कर सबीलुल रुश्द पे ले आए, और इस पे आपको भी सब्र करना पड़ेगा अगर आप रुश्द पे हैं और आपके इर्द गिर्द को गई पे है। प्यार से, मोहब्बत से, आजजी से, दर्दमंदी से, दुआओं से इस काम को आसान करवा लीजिए। आइए हाइलाइट्स ऑफ दी पारा यानी पारे की झलकियां देखते हैं। क्या कुछ पढ़ने वाले हैं इस पारे में, आपको तो अंदाजा नहीं। एक दिन पहले से मैं सोच सोच के मुस्कुराती हूँ कि इनको नहीं पता कि कल के पारे में क्या, ये तो पारा पढ़ने आए हैं, जल्दी जी खत्म कीजिए, 2 घंटे 2.5 घंटे। लेकिन अल्लाह का कलाम कैसे आपके मेरे छोटे से जहन में इतनी जल्दी आ जाए। तो ये झलकियां, ये छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्शियस करने के लिए हैं, क्या आप इस पारे में क्या कुछ पढ़ेंगे। पहली बात है कि खैर ख्वाही से रब के पैगामात पहुंचाने से क्या मुराद है, और सीखेंगे आप कि तबलीग बराए तबलीग नहीं है, खैर ख्वाही से करें, वरना आप कहते हैं लोग सुनते ही नहीं, इनको अकल ही नहीं। नहीं, आप खैर ख्वाह होंगे, देखिएगा अल्लाह आपके बात में असर पैदा करेगा। फिर अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना है, गुज़श्ता कौमों के हालात से सबक लेना सीखेंगे, अल्लाह से डर के रहना क्या होता है, नसीहत हासिल करना कैसे, कलामुल्लाह को मजबूती से पकड़ना और लोगों को इस पर अमल करने का हुक्म देना, इसकी पैरवी करना ये सीखेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, इनकी इज्जत करना, इनकी मदद करना, यानी खसाइस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे इस बारे में, और किताब को मजबूती से थामने और नमाज कायम करने से क्या मुराद है, हक के साथ रहनुमाई करने से क्या मुराद है, वही की पैरवी कैसे करनी है ये सीखेंगे, और अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम रखता है, उस साबित कदमी को पाने के क्या रास्ते हैं, ये हम सूरत अनफाल से शुरू करेंगे। फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना सीखेंगे, अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान कैसे हायल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंसान इस पे घबरा जाता है कभी कभी सुन के, तो हम सूरत अनफाल 24 में इसको देखेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले हैं, आमाल को देखने वाले हैं, मोमिनों के सरपरस्त हैं और बेहतरीन हामियों मददगार हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए इस बारे को शुरू करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करके कि हमारे वक्त में बरकत हो। शुरू करेंगे 88 आयत सूरत अल अराफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, कह शुएब हम आपको और जो आपके हमराह ईमान वाले हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, धमकियां। बस एक एक लफ्ज लिख लिया करें, जो तर्जमे से अलग होता है, टोन चेंज हो तो समझ लीजिए कि यह तर्जमा नहीं है, तो वो आपका थिंकिंग पॉइंट होता है उस आयत का। इल्ला ये कि तुम हमारे मजहब में फिर जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं, गो हम इसको मकरूह ही समझते हों। ईमान वाला ऐसी किसी ऑप्शन पे लब्बैक नहीं कहता जो उसको उसके मकसद से हटा दे और उसका रास्ता बदल दे। आज हम तो ऐसी दावतों पे फौरन लब्बैक के कान खड़े हो जाएं, तो नहीं, हजरत शुएब रुके, कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आज आप भी जब हक के रास्ते में निकलते हैं तो आपको भी ऐसी बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, तो उसको जस्ट डिलीट कर दीजिए, और हिदायत पे आने के बाद गुमराही पे आना, यानी सबील और रुश्त को छोड़कर गई पे आना, ये तो बड़ी महरूमी की बात है। हम तो अल्लाह पर बड़ी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी, और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मजहब में फिर आ जाएं, लेकिन हाँ ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। क्या पता चला कि कौम को हजरत शुएब का अल्लाह के अहकामात बताना अच्छा न लगा। याद रखिए, जब कौमें परवर्टेड हो जाती हैं, जब उनकी मत मारी जाती है, तो उनकी एक सोच बनती है और वो क्या कहते हैं, हम नहीं मानते, ये आपका अल्लाह ताला हर चीज़ में इंटरफेयर क्यों करता है, हम मस्जिद में जाएंगे ना, नमाज पढ़ लेंगे, प्लीज़ अल्लाह ताला से कहे कि आप हमारे मामले में मत बोलिए। और स्पेशली लोग माइंड करते हैं जब माली मामलात और ड्रेस कोड पे बात कीजिए, नोट कर लीजिए, इन दो बातों पे लोग इतने ऑफेंसिव होते हैं, और जो फिर दलाइल पे दलाइल देंगे कि आप कहेंगे अब मैं नहीं बोलती। कौमें नबियों के साथ इसी तरह की बातें करती रहती हैं, तो फिर नबी भी दुआ मांगते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुताबिक फैसला कर दे, तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है जब इंसान अपनों ही के बारे में ये जुमला बोल दे कि अल्लाह अब तो फिर मुझे इनसे जुदा कर दे, ये मेरे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, मेरी बात नहीं ले रहे, ये दोस्त अब मुझे अपनी तरफ मायल कर रही है, फिर मैं इसको तेरे लिए छोड़ती हूँ। और अलहुब्बु फिल्ला तो था, यहाँ अलबुग्ज़ु फिल्ला की मिसाल है, यानी ये तो मुझे रुश से उतार कर गई में डालने वाले हैं, तो मैं इन्हीं को छोड़ दूँ, तो हर उस दोस्ती और हर उस ताल्लुक से ज़रा सा एक कदम पीछे हो जाइए जो आपके अंदर से अल्लाह की मोहब्बत और उसके दीन पे अमल करना छुड़वा दे। और इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे, यानी देखिए कैसे मिसगाइड करते हैं लोगों को, बस इनको जलजले ने यहाँ पकड़ा, बस वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी, इनकी ये हालत हो गई जैसे इन घरों में कभी बसे ही ना थे, सब मिट गए, सब खत्म हो गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की वो ही हसारे में पड़ गए। इस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़कर चले गए और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तो तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। जुमला बता रहा है, एक एक लफ्ज से गम झलक रहा है कि गम था, फिर भी कह रहे हैं कि मैं गम नहीं करता। याद रखिएगा कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इस कौम को जो पकड़ा, उन पे अजाब डाला, तो ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला बार दफ़ा वर्ल्ड वाइड किस्म की मुसीबतें लाता है, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। मकसद क्या होता है? झंझोड़ो। और अल्लाह ताला आज भी लॉकडाउन को देख लीजिए और वायरसेस की वजह से जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको ला कर दिखा रहा है। समझो, तुम्हारे बनाए हुए सिस्टम दुरुस्त नहीं थे। कल एक आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला, पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन गलत तो कोई बात उसमें दिख नहीं रही थी, कि इस लॉकडाउन की वजह से, जहाज़ों के बंद होने की वजह से, और जाहिर है कि गाड़ियां घरों में, तो वर्ल्ड वाइड ऑयल की प्राइसेस किधर गई, और दुनिया की सारी चीज़ें जो बंद हुई हैं, इससे बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो ज़मीन पर आ रही हैं। तो अल्लाह बताता है, तुम सूद के मामले करते हो, तुम्हारा सिस्टम कभी भी फ्लरिश नहीं करेगा। तो इस तरह की माली बिगाड़ की बातें कर दी। सवाल पैदा होता है कि क्या हम इसको अजाब कहें? कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, जैसे आजकल कोरोना है, तो क्या ये अजाब है? नहीं कह सकते। ये या तो नबी बताता है जो उस दौर में मौजूद होता है, और या अल्लाह को बताता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ये कहिए कि ये आजमाइश है। अल्लाह ताला आजमाइश में डालकर खरे को खोटे से अलग करता है। ये आप आगे भी सुनेंगे इंशाल्लाह, पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये फितने हमारे खोट खपट को निकालने के लिए आती हैं। अब यहाँ चूंकि माली बिगाड़ था, तो जरा सा इसको देखिएगा। तीन तरह का अजाब आया, बादलों से आग बरसी, जलजला आया और सख्त चिंगाड़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो भी अच्छे हाल में, और अल्लाह कभी ऐसा वक्त ना लाए कि पूरी इंसानियत इस तरह के अजाबों से मारी जाए। फिर कौम की धमकियां और जिला वतनी, वापस हमारे दीन में पलट आओ, आज भी लोग यही चाहते हैं, तुम हमारे जैसे हो जाओ, हम तुमसे फिर वैसी मोहब्बत करेंगे। नहीं मानना, अल्लाह के नबी ने इसको एक हदीस में बहुत प्यारे अंदाज से बयान किया है। कुफर की तरफ पलटना इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे हाथ पे जलता हुआ अंगारा रखना। तो कभी अगर आपने कोई बुरी चीज छोड़ी थी, तो अब छोड़े ही रखिए, वापस ना पलटिए उस तरफ। इसी तरह जरायम क्या थे? खयानत थी, हराम तरीके से माल कमाते थे, नाप तोल में कमी करते थे। और इस पे तो एक सूरत मुतफ़फ़ीन है पूरी कुरान पाक में। थोड़ी सी डंडी कितना लेते होंगे? किलो में से कोई पाव तो नहीं चुरा सकता ना। लेकिन याद रखिए, हम भी अपनी जिम्मेदारियों में इतनी छोटी छोटी डंडियां मारते हैं, तो बाद में वो हमारे ऊपर गिल्ट बनती हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों में डंडियां ना मारिए। शिर्क और माली बिगाड़, और इसी तरह रखजनी और फसाद के शिकार थे। और कौम शुएब की गलत सोच थी, क्या कहते थे? ईमानदारी के साथ आज कहाँ काम चलता है, और अल्लाह के अहकामात मानकर कोई माल थोड़ी कमा सकता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाल पे क्या कमेंट देते हैं, देखिएगा। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहां के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो, मकसद लअल्लहुम यद्दरऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं। आज ये गिड़गिड़ाने के दिन है। अकड़ना और मस्ती करना और घरों में रहकर फिर नाफरमानियों के काम करना और कराना, इससे अल्लाह का गजब और भड़केगा, और न जाने फिर ये लॉकडाउन और कितना लंबा होगा। फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक इनको खूब तरक्की हुई, और कहने लगे कि हमारे आबाओ अजदाद को भी तंगी और आहत पेश आई थी, तो हमने अचानक इनको पकड़ लिया और इनको खबर भी न थी। नोट करिएगा, जब लॉकडाउन टूटेगा ना, फिर पता चलेगा कि आपने मैंने इसे क्या लिया। लोग फिर वही मस्तियां, वही दावतें, वही शादियां, वही कॉन्सर्ट और वही थीम मैरिजेस करेंगे, तो अल्लाह कहता मैं एक बार फिर पकड़ लूंगा कि इन्होंने सबक नहीं याद किया। फरिश्तों जरा इनको दोबारा सबक पढ़ाओ। तो ये आयत ये बता रही है कि जब एक तकलीफ से कोई ना सीखे, और बाद में क्या कहे, हाँ ये तो होता है, ये तो मदर नेचर है, ये तो दुनिया का नाम है, और वो उसे समझे ना, हाँ जी अब वैक्सीन जारी हो गई, अब उसका ये हल मिल गया, और अब गर्मी आ गई, ये इन्हीं बातों में खोए रहेंगे, नसीहत नहीं लेंगे, और अल्लाह ना करे कि अब कभी ऐसा हमारे साथ हो। और अगर इन बस्तियों वाले ईमान लाते, देखिएगा कोरोना जो सारा प्रॉब्लम आया उसे निकलने का रास्ता बताया जा रहा है। लॉकडाउन से निकलने के बाद करना क्या है? अफामीन अहलुल कुरा से पहले वलवन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। फिर और अगर बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजकारी इख्तियार करते, तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह आज भी खोल दे और हमें ईमान भी दे दे और सब कुछ कर दे। लेकिन उन्होंने तकजीब की, तो हमने इनके अमाल की वजह से इनको पकड़ लिया। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखबर हो गए कि इन पर हमारा अजाब शब के वक्त आ पड़े, जिस वक्त वो सोते हों, यानी रातों को अल्लाह बेखबरियों में पकड़ लेता है। और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ पड़े, जिस वक्त के वो अपने खेलों में मशगूल हों, यानी पकड़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या बस वो अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो गए, बस अल्लाह की पकड़ से सिवाय इनके जिनकी शामत आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता। तो बेफिक्रे मत हो, डोंट से कि वी आर यूज टू ऑफ नाउ, अब तो हम यूज टू हो गए, नहीं, हर वक्त फिक्र कीजिए कि इससे बड़ी तकलीफ ना आ जाए। और कई लोगों को जो जमीन के वारिस हुए, वहां के लोगों की हलाकत के बाद इन वाकयात में जो मजकूर हैं, ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो इनके जरायम के सबब इनको हलाक कर दें, अगर हम चाहें तो इनके जरायम के सबब इनको हलाक कर डालें, और हम इनके दिलों पर मोहर लगा दें बस वो ना सुन सके। यानी इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरने के बाद भी इसमें से सबक ना लें। इन बस्तियों के कुछ कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं। अब यहाँ खिताब अल्लाह के नबी से है, जिनको ये पिछले नबियों की कहानियां बताई गई और अब उसमें से मॉरल्स पिक किए जा रहे हैं। स्टोरी टेलिंग देन टेकिंग द मॉरल्स, ये स्टाइल कुरान से ही लोगों ने सीखा। और इन सब के पास इनके पैगंबर मोजज़ात लेकर आए, फिर जिस चीज को उन्होंने इब्तदा में झूठा कह दिया, ये बात ना हुई कि फिर इनको मान लेते। ये है अल्लाह की बहुत बड़ी पकड़। एक दफा बंदा नो कह देना किसी चीज को, दोबारा दिल भी चाहता है यस कह दूं, पकड़ लूं इसको, नफ्स आगे आता है अना। और ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह का फैसला सुन लीजिए, कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, अल्लाह ताला इसी तरह काफिरों के दिलों पर बंद लगाता है। तो कभी किसी बात पे नो कहा हो और दोबारा मौका आ जाए, फौरन से पहले यस कह दीजिए, हिदायत का दरवाजा अंदर से खुलता और बार बार नहीं खुलता। इतनी दफा सुन सुन के कहीं सुन ना हो जाए। तो कौमे शुएब का किस्सा चूंकि माली मामला का था, तो आइए देखिए कि माल में बरकत कैसे होती है। 8 चीजें हैं। नंबर 1, तौबा इस्तिग़फ़ार करने से, शरीयत की पाबंदी से, तकवा और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने से, अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग होने से, यके बदीगरे हज और उमरा करने से, अल्लाह की राह में खर्च करने से, कमजोरों के साथ एहसान करने से, और सिला रहमी और अल्लाह की राह में कुर्बानियां देने से। बाकी चीजें आप ज़ादुल खैर में से रिस्क की कुंजियों में सुन लीजिए, जहां आपके साथ 30 चीजें शेयर की गई थी रिस्क की कुंजियों की सूरत में। तो मर्दों को यही पैगाम है इन आयतों का कि अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह के हुक्मों पे चलिए, अल्लाह इस लॉकडाउन के दिनों में भी आपकी थोड़ी बहुत कमाई में भी बरकत देगा इंशाल्लाह। और ख़वातीन को पैगाम ये है कि माल को सोच समझ के खर्च करें, ताकि किसी मुश्किल हालात में पड़ने से पहले अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। और अक्सर लोगों को हमने वफाए अहद ना देखा, यानी ये भी एक कमेंट ले लीजिए, आयत नंबर 1 और 2 को हाईलाइट कीजिएगा। वमा वजत नली अक्सरी हिम मिन अहद वही वजत ना अक्सर हम लफासिकीन, और अक्सर लोगों में हमने वफाए अहद ना देखा, यानी वादे पूरे नहीं करते अक्सर लोग, और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया, यानी हुक्म नहीं मानते। अल्लाह ताला हमें अक्सर में ना करें। फिर इनके बाद अब यहां से देखिएगा, तवील किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का है, क्योंकि इनका वक्त भी लंबा था और चूंकि मुसलमानों से करीब का दौर है, इनके साथ जो कौम थी वो आज भी जिंदा है, इसलिए इस किस्से को कदरे डिटेल से यहाँ पेश किया गया। पीछे आप पढ़ चुके हैं पहले पारे में इसकी बहुत सी डिटेल्स, यहाँ से हम सिर्फ अपने लिए पिक करेंगे। और मैं आपको अब से लेके पारे के एंड तक के लिए होमवर्क देना चाहूंगी कि आप सबीलो रुश्त और गई का जो तकाबुल था ना, उसको नोट करते जाएं, कौन रुश्त पे रहा, कौन गई पे आ गया, किसको मौका मिला गई को छोड़कर रुश्त पे आ जाए, वो नहीं आया, और कौन आ गया। तो इंशाल्लाह एंड पे एक बहुत खूबसूरत चेकलिस्ट तैयार होगी आपके मेरे अपने अमल के लिए। फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देख के फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, मगर इन लोगों ने इसका बिल्कुल हक अदा न किया। सो देखिए इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। तो लोग वक्त के नबी का भी हक अदा नहीं करते, आज के दौर में कौन कर सकता है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ पैगम्बर हूँ। यहाँ से दावत के बड़े खूबसूरत नुक्ते आप तर्जमे से ही नोट कीजिएगा। मेरे लिए यही शायान निशान है कि सिवाय सच के अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब ना करूं। इस मैदान में आकर कभी झूठी रिवायत झूठी कहावत बयान ना कीजिए, सच काफी है कुरान और सुन्नत की सूरत में लोगों के सामने रखने को। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूँ, सो तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर आप कोई मौजजा लेकर आए हैं तो इसको आप पेश कीजिए, अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना सर डाल दिया, बस अचानक वो एक साफ अजदहा बन गया और अपना हाथ बाहर निकाला, सो यकयक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया, यानी यदे बैजा बन गया। कौमे फिरौन में जो सरदार लोग थे, यानी फिरौन के इर्द गिर्द रहने वाले दरबारी, उन्होंने कहा वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है। ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे, सो तुम लोग क्या मशवरा देते हो? उन्होंने कहा आप इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हर कारों को भेज दीजिए। पब्लिसिटी करवा रहा है अल्लाह ताला फिरौन के जरिए मूसा अलैहि सलाम के पैगाम की। अल्लाह वो काम कर लेता है जो बंदा नहीं कर सकता। कोई मान न करे कि मैं और आप अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह फिरौन से इस वक्त अपने दीन का काम ले रहा है। और अल्लाह के नबी की हदीस से भी ये बात मिलती है। मूसा कहाँ थे पहुंचने वाले, कहाँ मीडिया पे खबरें देते हैं, कोई एक एक ब्रेकिंग न्यूज बना दी, एडवर्टाइज किया, जाओ सबको बुलाओ कि सबके सामने मूसा को रुसवा करते हैं, अल्लाह कुछ और प्लान कर रहा था, फिरौन ने कुछ और सोचा। तो यहाँ से अब जादूगरों का मंजर जरा देखिएगा और सबील और रुश्त और गई को जहन में लाइएगा और अपना तकाबुल कीजिएगा इस वक्त ये सुनते हुए जादूगरों के मामले से, कि उनके सामने तो एक दफा हक आया और वो झुक गए, मेरे सामने तो बार बार हक आता है और पता नहीं मेरा रिस्पॉन्स क्या मिलता है। और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए, कहने लगे अगर हम गालिब आ गए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा, देखिए लालच छुपा हुआ पैसे का। फिरौन ने कहा हाँ, और तुम मुकर्रब लोगों में हो जाओगे, हम तुम्हें अपने मिनिस्टर बनाएंगे, सेक्रेटरीज बना लेंगे, तुम हमारे बहुत चहीते बन जाओगे। इन साहिरों ने अर्ज किया है मूसा ख्वाब डालिए या हम ही डालें, यानी टेक योर टर्न वाली कैफियत है। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजरबंदी कर दी, जादू की एक किस्म है, और इन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखाया। और हमने मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। सो असा का डलना था कि इसने इनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया। बस हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। याद रखिए कि मूसा अलैहि सलाम का अजदहा सारे बातिल को खा गया, रस्सियां डोरियां सब खा गया। इसी तरह जब हम आज के दौर के इस मोजज़े को, जिसको कुरान पाक कहते हैं, सही तरह से इंसानों के सामने पेश करेंगे तो माशरे का बातिल खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहि सलाम का मोजज़ा टाइम बाउंड था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा क़यामत तक के लिए था। तो क्या हुआ जब हक जाहिर हुआ तो उन लोगों के दिल की कैफियत, बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे, कौन फिरौन वाले, और जो साहिर थे सजदे में गिर गए, कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का भी रब है। ये किसने सजदों में डाल दिया, फौल किया? दिल ने डाला। जब दिल में हक आ जाता है ना तो इंसान फिर सबीलुल गई पे रह नहीं सकता। सुबह तक गई पे थे, कुफर पे, शिर्क पे और जादू टूनों में, और अब अल्लाह ने उनको एकदम दूसरी तरफ डाल दिया। तो दुआ कीजिए आज हमारे दिल भी सजदों में गिर जाएं, हमारे दिलों में ये आ जाए कि आज के बाद बस खत्म, इसके बाद मैं और मेरा रब और उसकी मर्जी। फिरौन कहने लगा, उसकी तो ना पे चोट पड़ गई ना कि मेरे बंदे अब मूसा की टीम में शामिल हो गए। कैसे? कहने लगा तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं। बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामत हुआ है, ताकि तुम इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकालो, सो अब तुमको हकीकत मालूम हो जाती है। देखिए कल तक तो ये फिरौन के बंदे थे, बल्कि सुबह तक, और अब फिरौन उन्हीं पे शक करने लगा। तो नोट कीजिएगा, डिक्टेटरशिप में यही होता है, अपने ही साथियों पे भरोसा नहीं होता। हालांकि बात ऐसी नहीं थी, वो मूसा के साथ नहीं गए, वो हक के साथ गए। और दूसरी बात यह है कि इंतजार नहीं किया, जरा सोच ले, रिसर्च कर ले, तहकीक करें, बस बात दिल में आई तो कर दीजिए। आपको मुझे भी इसी असूल पे अमल करना है अगर वाकई हम सबील और रुश्त पे चलना चाहते हैं। अब फिरौन ने गुस्से में आकर एक कानून बनाया, सुनिएगा, मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। डिक्टेटरशिप, जो चाह कर दिया, जो चाह छोड़ दिया, हर दौर के डिक्टेटर्स एक ही जैसे होते हैं। वो कहते हैं ना कि इफ यू कैंट कन्विंस देम कन्फ्यूज देम वाली कैफियत थी। उन्होंने लोगों को परेशान करना चाहा कि शायद ये इसी बात पर डर जाएं और आ जाएं वापस मेरी तरफ। तो सुनिएगा उनका जवाब, जो आपके मेरे लिए हकीकत में एक आईना है। वी आर बोर्न मुस्लिम, वो ईमान मेरे आपके पास नहीं दिखता। अल्लाह के हुक्मों को सुनकर मानने की वो कैफियत नहीं आती जो सुबह के काफिर और अभी के मुसलमानों को समझ आ गई। और ये एहसास, ये यकीन, क्या उन्होंने जवाब दिया, हम मर कर अपने मालिक ही के पास तो जाएंगे। ये एहसास अगर आ जाए ना तो आप दुनिया के किसी बड़े से ना डरे और किसी छोटे की परवाह ना करें कि मैंने तो जवाब अपने रब को देना है। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, हम सवारी पे बैठते हुए तो ये दुआ पढ़ लेते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में भूल जाते हैं। और हकीकत है कि नया नया ईमान ऐसा ही होता है, जितना ज़्यादा नए ईमान को कैश करा लेंगे, अमल की पूंजी जमा होती जाएगी। जादूगरों के ईमान का ये जज्बाती पहलू दिख रहा है। नया नया ईमान जो ना झाग की तरह होता है। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे सूरत रात की, एक बड़ी खूबसूरत मिसाल आ रही है अगले पारों में। जब कोई बात समझ आए, दिल में जज्बा आए, नदामत आए, रिग्रेट फील हो, फौरन अमल शुरू कर दें। बस आप देखिए कि फिजी ड्रिंक बॉटल खुलते ही एकदम जोश वाली गैस वाली बोतल बाहर आती है ना, ड्रिंक आता है, पीने वाले एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर बोतल खुली रहे पड़ी रहे, कोई पीता है उसको? पियेंगे तो बबल्स ही नहीं होंगे। वो ईमान जिसके बाद बबलिंग शुरू हो जाए ना, बस उसको अमल में ढाल दीजिए। गरम गरम रोटी का मजा खाना शुरू कर दीजिए। वही रोटी थोड़ी देर ठंडी हुई तो सख्त हो जाएगी। इसी तरह गरम गरम ईमान आते ही बस अमल करते जाइए, और इन जादूगरों को अपने उस्ताद बना लीजिए कि बात सुनी थोड़ी और अमल ज्यादा किया, इंशाल्लाह समझ आएगी। और आप देखिए ये मंजर देख तो सारे ही रहे थे, जिनमें से फिरौन भी था। हिदायत सिर्फ इनको क्यों मिली? क्योंकि इनके दिल तासुब से पाक थे। और जब समझ जो आ गया कि इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, फिरौन का जुमला सुनिए और इन लोगों की बातें सुनिए, आपको दो मुख्तलिफ शख्सियात नहीं दिख रही? वमा तन्किमु मिन्ना इल्ला नामन्ना बि आयाति रब्बिना, और तूने हम में कौन सा ऐब देखा है सिवाय इसके कि हम अपने रब के काम पर ईमान लाए हैं। जब वो हमारे पास आए, ए हमारे रब, हम पर सबर का फैजान फरमा, हमारी जान यानी हालत इस्लाम पर निकालना। रब्बना फ़रिग़ अलैना सबरम व तवफ़ना मुस्लिमीन। आज के मुसलमान को भी यही दुआ मांगने की जरूरत है। किसी फिरौनी निजाम से मुतासर हुए और डरे बगैर हक की रास्ते पे चलते ही जाना है। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजा कुरान है था रहेगा। मूसा का मौजा उनके हाथों में तो यद बैजा अजदहा था, आज नहीं है। आज मूसा भी आ जाए तो उनके पास ये दोनों मौजे नहीं होंगे। तो आपने मैंने इस कुरान की ताकत को दुनिया में लेकर चलना। फर्क किस बात का है? जादूगर और फितने माल और उनकी कैफियत को अगर हम देखें, तो आप देखिए कि जब कुफर पे इंसान होता है तो माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। वो भी थे फिरौन से पूछ रहे थे कि हमें क्या मिलेगा, फिर इनाम और ओहदों के लालची थे। लेकिन जूं ही सच्चा ईमान उनकी जिंदगी में आया, मोमिन बने तो साबित कदम हुए, न डर हो गए, जुरतमंद हो गए, इस्तकामत वाले हो गए, दुनिया और उसके माल की बजाय आखरत के मतलाशी हो गए। ये बिग यू टर्न है जो लोगों को फिर गुमराहियों के रास्तों से उतार कर रुश्त और सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे ले आता है। क्या देखा अभी तक 88 से 126 में, जरा सा दोहरा लीजिए ताकि फिर आगे ले चले। अपने आबाई मजहब को छोड़ना, जैसे कि अभी कौमों के किस्सों में देखा, और नाप तोल में कमी ना करना, कुफार के नजदीक खसारे वाली बात थी। आज बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं आते इस पे कि लो हम बाप दादा के तौर तरीकों को छोड़ दें और बस फिर हमारा तो नुकसान होगा। फिर इसी तरह नबियों की तकजीब करने वालों का बुरा अंजाम देखा। गुनाहों के नतीजे में सिर्फ अजाब ही नहीं आता, दिलों पर ताले भी पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए, एक दुआ मांग लीजिए कि अल्लाह मैं खैर की चाबियां और शर के ताले बना दे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकालमा सुना और ईमान लाने के बाद जादूगरों की खूबसूरत दुआ भी देखी और उनका हाल भी देखा। अब चलते हैं जरा फिरौन के ऊपर कि उसने इसका क्या रिएक्शन शो किया। अब सेंक्शंस लगेगी, अब इल्जाम लगेंगे, अब मुसलमानों को न जाने क्या कुछ कहलाया जाएगा, जो कल भी था और आज भी है, इन आयतों की रोशनी में देखिएगा। वकाल अल मलाउ मिन कौमी फिरौन, और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा, क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें और आपको आपके माबूदों को तरक किए रहें? फिरौन ने कहा, हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। देखिए लॉज बनते हैं मुस्लिम किलिंग के, और औरतों को जिंदा रहने देंगे, और हमको इन पर हर तरह का जोर है क्योंकि हम बड़ी ताकत हैं। अब देखिए हर दौर के डिक्टेटर ने यही किया, बिला वजह एम्बेरस हुआ और मुसलमानों की नस्लें काट दी। अब बनी इसराइल पे ये बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहतरीन लीडरशिप शो करते हैं। अल्लाह आज हमें ऐसा ही कोई मुस्लिम लीडर अता कर दे जो मुसलमानों के कमज़ोर हौसलों को मजबूत कर सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत तरीके से उनको सपोर्ट की। आला मूसा अली कौम इस्तईनु बिल्लाही वसबिरू, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह का सहारा हासिल करो और सब्र करो, ये जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे, और आखिर कामयाबी इन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। यानी कौम की तरबियत कर रहा है कि तुम अल्लाह का डर रखो, दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कौम के लोगों की जरा डिटाई तो देखिए, क्या ताने मेने देने लगे। ये कोई वक्त ताने देने का होता है जो ये कहने लगे? सुनिएगा, कौम के लोग कहने लगे, हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। नाउज़ुबिल्ला, क्या दिल पे चोट चोट पड़ी होगी मूसा के। अगर आप कभी लीडरशिप के ओहदे पे हों और आपके साथियों ने आप पे शक किया हो, और अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला बरता हो, तो आप इसको महसूस कीजिएगा। दो तरह आजमाइश कैसे कि दो दफा फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को ज़िबह कराया था, एक तो मूसा की आमद से पहले और एक इस मौके पे भी। तो कौमें जल्दबाज होती हैं, लीडर्स के बारे में बहुत जल्दी बदगुमान होती हैं, लेकिन लीडर उनके लिए तो चल नहीं रहे थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, इसलिए इन बातों से घबराए नहीं। बल्कि क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को खलाक करेगा, और बजाय इनके तुम कोई सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। नोट कीजिएगा, पीछे फिरौन के जादूगरों का किस्सा देखा, कितनी जल्दी मान गए। उसके बाद फिरौन की गीदड़ भभकियां देखी, हम तो तुम पे काहिरून हैं, भूल गया कि इसके ऊपर एक अलकहार भी है। और फिर उसके बाद अब बनी इसराइल का वाकया, मूसा से आके झगड़ा कर रहे हैं, ये हम पे अजाब क्यों आ रहे हैं। ये ऐसी है जैसे कोई कहे कि मूसा तुमने तुम्हारे देवी देवताओं को नाराज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम इनका मोरल बुलंद करते हैं, उम्मीद की शम्में रोशन करते हैं, लेकिन ये लोग झगड़ना चाहते हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम का दिल थामते हैं। तो याद रखिएगा, ईमान शर्तें लगाकर नहीं आता। अच्छा मैं ये कर लूंगी, अगर ये हो गया तो मैं नमाज पढ़ लूंगी, अच्छा मेरे बहुत अच्छे नंबर आए तो मैं ये करूंगी, अच्छा घर बन जाए फिर हम सूद छोड़ देंगे, बस बच्चों की शादी कर लें तो हम सब तौबा कर लेंगे। ऐसे लोग नहीं, जबरदस्ती के सब्र में बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं। अभी तक बनी इसराइल फिरौन के चुंगल में थे, और वो कहते हैं कि पिसे हुए थे तो अल्लाह से जुड़े हुए थे, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा प्यारा लीडर दिया, अब इनके ऊपर अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम्हारा तर्ज अमल देखेंगे। एक जुमला लिख लीजिए, आजमाइशों के सब्र में बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन खुशियों के सब्र में बहुत थोड़े लोग कामयाब होते हैं। अब आगे 9 किस्म के मुख्तलिफ अजाब जो एक खास ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आए, लेकिन इन आयतों को पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि बस एक आ जाया तो एक कल आ गया, उसका तذکرہ है। देखिए और पता क्या चलता है कि अल्लाह कौमों को बार बार संभलने का मौका देता है, उन पे मुख्तलिफ वबाएं और आफतें तोड़कर। वलकद अखसना अल फिरौन बिस्सिनीन व नक्स मिन अस्समरात लअल्लहुम यतज़क्करून, और हमने फिरौन वालों को मुबतला किया कहत साली में और फलों की कम पैदावारी में। वजह क्या थी? ताकि वो नसीहत कबूल करें। लेकिन उनका हल क्या था? सो जब इन पर खुशहाली आ जाती थी तो कहते, ये हमारे लिए होना ही था, यानी हम डिजर्व करते थे। और अगर इनको कोई बदहाली पेश आती तो मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की नहुसत बताते, यानी पहले तो मूसा के पास आके कहते दुआ कर दे, पीछे पड़ा है सूरह बकरा में कि ये अजाब टल जाए, ये हो जाए, जब टल जाता तो बाद में आकर कहते ये आपकी मिसमैनेजमेंट है, वैसे हम तो इस तरह के अजाबों को डिजर्व नहीं करते। याद रखो, इनकी नहुसत अल्लाह के पास है, लेकिन इनके अक्सर लोग नहीं जानते। और यूं कहते कि ऐसी ही बात हमारे सामने लाओ कि इनके जरिए ऐसे हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज न मानेंगे। सख्ती और ठिठाईपन की दलील है यह आयत इन लोगों के दिलों में थी जो हक के मामले में। फिर हमने इन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, कि ये सब खुले खुले मोजज़े थे, सो वो तकबर करते रहे और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा। यानी इन तकलीफों और इन वबाओं ने भी इनकी आंखें नहीं खोली। और जब कोई अजाब इन पर वाकई होता तो यूं कहते, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए। सुस्त कौमें दुआएं खुद नहीं करती, बल्कि वो भी अंबिया कराम से मंगवाती हैं। आज कहीं हमारा ये हाल तो नहीं हो चुका, मौलवी साहब को बुलाओ दुआ कर दें। कौन सा वादा? जिसका इसने आपसे अहद कर रखा है, अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम जरूर जरूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे, और हम बनी इसराइल को भी रहा करके आपके हमराह कर देंगे। फिर जब इनसे इस अजाब को एक खास वक्त तक के लिए के इस तक इनको पहुंचना था हटा देते, तो वो फौरन यह चिकनी करने लगते। इसको इंशाल्लाह उस दिन सोचेंगे जिस दिन ये लॉकडाउन और सब मुश्किलात खत्म होंगी, कि क्या वाकई फिर हमने तो अल्लाह से जो इन दिनों में वादे किए हुए हैं इनको तोड़ा तो नहीं, फिर हमने इनसे बदला लिया, यानी इनको दरिया में गर्क कर दिया इस सबब से कि वो हमारी आयतों को झुटलाते थे और इनसे बिल्कुल ही गफलत करते थे। नोट कीजिएगा, गफलत की सजा मिलती है कौमों को इस तरह के हालात में। और हमने इन लोगों को जो कि बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे इस सरजमीन के पूर्व और पश्चिम का मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी है। मुल्क शाम की तरफ इशारा। और आपके रब का नेक वादा बनी इसराइल के हक में इनके सबर की वजह से पूरा हो गया। कौमों को सबर करना पड़ेगा अगर दुनिया में इस्लाम को लाना है। उम्मत मुस्लिमा का आज का सबर कल की नस्लों के लिए खैर का जरिया बनेगा। और हमने फिरौन के और इसकी कौम के साख्ता परदाख्ता कारखानों को और जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते थे सब को दरहम बरहम कर दिया। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना तो ऐसा ही होता है, सब तरक्की हाथ में रह जाती है और सब वो कहते हैं ना भीगी बिल्ली बनकर अल्लाह की तरफ नजरें लगाते हैं कि कब हालात बदलेंगे। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। अब यहाँ से दूसरा दौर शुरू होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के दो मरहले थे, पहला पूरा होता है और अब दूसरा होगा, यानी फिरौन का डूबना और बनी इसराइल का उनसे आज़ाद होना। ये गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ अगर रिलेट करें ना तो इसमें कह लीजिए कि हिजरत से पहले का वक्त था। अब दूसरे हालात जो इनके ऊपर खुशियों के आने थे लेकिन जिहाद का इनकार करके और अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर इन्होंने क्या किया और बछड़े को पूजा, ये हम सब अगली आयतों में पढ़ते ही जाएंगे। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया, बस इन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे। कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनके ये माबूद हैं। आपने फरमाया कि वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है, यानी अल्लाह ने एक जिंदा जागते बूझते फिरौन से तुम्हारी निजात की और अब तुम खुद बुत बनाना चाहते हो। कौमें खुशियों का सब्र सहार नहीं सकती, गम तकलीफ का सब्र तो कर ही लेती हैं, अच्छे दिनों का सब्र नहीं करती। ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज कर दूं, हालांकि इसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। अच्छे लीडर्स माजी की गलतियों से सीखना सिखाते हैं और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बहुत भारी आजमाइश थी। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 मजीद, यानी इस पे 10 और बढ़ाएं और 10 मजीद से इन 30 रातों को पूरा किया। बस इनके परवरदिगार का वक्त पूरे 40 रात का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इसलाह करते रहना और बद नज़म लोगों की राय पर अमल न करना। क्या पता चला, मूसा अलैहिस्सलाम बेहतरीन लीडर थे, अपने बाद किसी को नॉमिनेट किया, ऐसे अनअटेंडेड लोगों को नहीं छोड़ा। ये 40 रात के लिए क्यों गए भाई, वहीं रहते। फोकस होना था, पहले फोकस होके लिया फिर दिया। यहाँ असल में अब तौरात के मिलने के वक्त करीब है और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर व तबत्तल रही तब्दील आली कैफियत में गए तो मूसा अलैहिस्सलाम भी फोकस्ड हुए। आप मैं अगर ये 2 से 3 घंटे तक इस वक्त फोकस्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह आप देखिएगा आप दूसरों से बहुत ज्यादा ले लेंगे इस हिस्से में से। तो फोकस्ड होने के बाद है दूसरी बात, एक ये कि डिसिप्लिन कायम रखना, ये थी वो खूबसूरत नसीहत जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने दी। और साथ ही का इसलाह करना, क्योंकि उनको पता था कि मेरे इधर से उधर होते ही कुछ बिगाड़ वाले लोग बिगाड़ तो फैलाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की तो अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार अपना दीदार मुझको करा दीजिए, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। क्या खूबसूरत ख्वाहिश थी मूसा की कि मैं एक नजर आपको देख लूं। इरशाद हुआ, लन तरानी, तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते लेकिन आप इस पहाड़ की तरफ देखते रहिए, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो आप भी मुझे देख सकोगे। बस जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इसके पर खच्चे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। ये मुतालबा वही करता है जिसको मोहब्बत होती है। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी जात पाक है, मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ है, मूसा, मैंने पैगम्बरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर आपको चुन लेने की वजह से और जो कुछ आपको मैंने अता किया है इसको ले लो और शुक्र करो, क्या कैफियत होगी मूसा के दिल की, वो तो कुछ और सोच कर गए और वहां कुछ और मिल गया। सही बुखारी की रिवायत है कि क्यामत के दिन सब लोग बेहोश होंगे, और जब होश में आएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहते हैं कि मैं होश में आने वालों में सबसे पहला शख्स होऊंगा। मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया थामे खड़े हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे पहले होश में आए या इन्हें कोहे तूर की बेहोशी के बदले में मैदाने मख्शर की बेहोशी से मुस्तस्ना रखा गया, एग्जेम्प्टेड था। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला नबियों को मुख्तलिफ हालात में कुछ फजीलतें दे देता है। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अरिनी अनजुर, आज आपका मेरा क्या हाल है। अगर मोमिन है तो हकीकत में यही ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश तो नमाज के लिए खड़ा करती है। कान कतराहू की कैफियत पे नमाज आने लगती है कि अल्लाह का दीदार नमाज में होगा, उससे मुलाकात होगी। इसके बरक्स जो फितना माल में मुबतला लोग हैं, जो सबीलुल गई पे भाग रहे हैं, वो माल में इजाफे को देखते रहते हैं और नमाजें छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हमारे मर्दों को भी और औरतों को भी बाजमात नमाज की कदर की तौफीक अता फरमाए। अब तौरात की वो तख्तियां जिसमें अहकाम थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिलती है, यकलख्त मिल गई, एडवांस मिल गई। अल्लाह के नबी पे जो किताब थी वो 40 साल में उतरी, क्योंकि उसने रहती दुनिया तक रहना था। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील इनको लिख कर दी। तुम इनको पूरी ताकत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखलाता हूँ, यानी वो लोग जिन्होंने बात ना मानी, अब तुम उनका अंजाम देखने वाले हो। तो क्या सीखा 127 से 145 में? पहली बात है कि बनी इसराइल के दिल से बछड़े की मोहब्बत ना गई, आज हमारे भी दिलों से नहीं गई। इतने साल हो गए अलग हुए, लेकिन आज भी उन्हीं रस्म रिवाज में खोए हुए हैं जिसमें पहले थे। इसी तरह बनी इसराइल पर फिरौन का जुल्म और मूसा अलैहिस्सलाम की इनको ईमान अफरोज नसीहत सुनी। अनदेखे माबूद की इबादत से इनकार का क्या नुकसान था वो देखा, और अल्लाह ताला के दीदार की ख्वाहिश मूसा में किस तरह थी और आज हम में कैसी है, और तौरात का नजूल और उसकी अफादियत, यानी अब हम इस मुकाम पे खड़े हैं बनी इसराइल की हिस्ट्री में कि जहाँ तौरात नाजिल होती है। अल्लाह ताला इस किताब की खूबियां बयान करने के साथ ही फरमा देते हैं, किताब तो मिलेगी, सब कुछ होगा, आपको तो खैर मिलेगी, लेकिन सासरिफन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्दि बिगैरिल हक। इसको नोट कीजिएगा, पीछे एक जुमला बोला था कि गाफिल को हिदायत मिल सकती है लेकिन मुतकब्बिर को नहीं मिलती, बिल्कुल वही बात है। इधर मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से दूर ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बुर करते थे। तो मुतकब्बिर को कुरान और कुरान पाक की बातें, नसीहतें, अल्लाह ताला की बातें कुछ समझ नहीं आती। वो कहते क्या बातें करते हो, आज के दौर में ये पढ़ने की कोई बातें? हालांकि जिनका इनको कोई हक नहीं, और अगर तमाम निशानियां देख ले तब भी वो इस पर ईमान न लाएंगे, और अगर हिदायत का रास्ता देखे तो इसको रास्ता न बनाएंगे। ये है सबीलुर रुश्द और सबीलुल गई का रास्ता, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना ले। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और इनसे गाफिल रहे। अल्लाह ताला आपको मुझे इस आयत पे नहीं बल्कि वो बना दे जैसा अल्लाह चाहता है। आप देखिए ऐसी कैफियत आती है ना तो फिर जिंदगी इस तरह की हो जाती है। जरा सा इस पे फिर गौर करके देख लीजिए, क्या मेरा मसला ये तो नहीं कि बार बार रुश्त को छोड़कर गई पे जाती हूँ, मेरा फोकस टूट जाता है, मैं डी ट्रैक हो जाती हूँ, मेरा अमल छूट जाता है, कभी बच्चों की खुशी के लिए, कभी माल कमाने में, कभी हीले बहानों में। क्या हो गया मुझे, क्या वाकई मैं भी अपने आप को इसी तरह से तो इधर से उधर और उधर से इधर तो नहीं कर रही? तो जितना सोचते जाएंगे अल्लाह ताला उतना आपके लिए आसान करता जाएगा, और फिर अल्लाह से दुआएं करते जाएंगे कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखना। सवाल कीजिए खुद से, मुझे कहाँ जाना है और हम सबको कहाँ जाना है, और अगर इस सवाल का जवाब ना मिले तो फिर अपना जायजा लीजिए। सबील और रुश्त पे जाना है तो कुरान हमें सबील और रुश्त की तरफ ले जाता है, और अगर सबील उल गई पे जाना है और हैं तो याद रखिएगा कि माल की मोहब्बत में शरीयत की खिलाफ वर्जी इंसान को सबील उल गई की तरफ ले जाती है। दिलों में बछड़े हों तो अल्लाह नहीं बसता, याद रखिएगा। आज कहीं माल, कहीं औलाद, कहीं खानदान, कहीं बिरादरी, कहीं अना, हीले बहाने, ये सब हमें अल्लाह का हुक्म भुलवा देते हैं। अल्लाह ताला इससे बचा कर रखे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क्यामत के पेश आने को झुठलाया, इनके सब काम गारत गए, इनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। और मूसा अलैहि सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद बना लिया, जो कि एक कालिब था, यानी जस्ट एक डमी थी, जिसमें एक आवाज थी। क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो इनसे बात नहीं करता था और ना कोई राह बतलाता था? इसको उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया। और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए, तो कहने लगे, अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमारा गुनाह माफ न करे तो हम बिल्कुल ही गए गुजरे हो जाएंगे। कौमें बार बार भटकती हैं, उतरती हैं रुश्त के रस्तों से, गई की तरफ जाती हैं, लेकिन वक्त के नबी और लीडर्स उनको बचाते हैं। इसलिए अपना ताल्लुक कभी इल्म से न तोड़िए कि अगर कभी खुदा न खास्ता आप भी कभी भटकने लगे इधर से उधर, तो कोई तो हो जो आपका हाथ थाम ले। तो ये है सिर्फ बुलंदी से पस्ती का सफर। उम्मते मूसा का बछड़ा या उनका फितना वो बछड़ा था, और ऐसी एक शोभदाबाजी थी, और लोगों को ऐसी शोभदाबाजियां अच्छी बड़ी लगती हैं, जबकि उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बछड़ा उनका फितना माल बन गया। तभी बार बार रुश्त से उतर कर गई पे जाते हैं। सोचिएगा एक बार कि मैं कब हिदायत का रास्ता छोड़कर गुमराही के रास्ते पे आने लगती हूँ और आने लगता हूँ। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापिस आए गुस्से और रंज में भरे हुए, क्यों? खबर मिल गई थी कि कौम ने शिर्क किया है। तो ईमान वाला तो फिर शिर्क वाली बातों पर इंजॉय तो नहीं करता ना। कोई बात नहीं, रस्में ही तो हैं और खुशी तो है, और ये तो फिल्मों में एक एक गाना तो होता ही है जिसमें कुछ ना कुछ उन्होंने अपना दीन तो दिखाना है। वो तो परेशान होता है, खुद से पूछिए, खिलाफे शरीयत चीजों को देखकर गुस्सा आता है या इंजॉय करती हूँ वहां बैठकर? क्या कहा मूसा ने, तुमने मेरे बाद ये बड़ी बुरी जानशीनी की। कौम को नहीं पूछा, जिम्मेदार को पूछा। तुम सुनाओ, याद रखिए, जहां हालात खराब होंगे वहां वजह जिम्मेदारान होंगे, इल्ला माशाल्लाह। क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर इनको अपनी तरफ घसीटने लगे? एक बिल्कुल इंस्टेंटली और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जो किसी में भी हो सकता है। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे माँ जाए, देखिए बात संभालने वाले, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बड़े भी थे और बुजुर्ग भी थे। अफसोस के साथ कुछ लोग उम्र के साथ बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें बुजुर्गी नहीं आती। वो पोलका डॉट की फ्रॉक पहनकर खुद को अपनी बहू बेटी के बराबर ही समझना चाहें और बेहिकमत फैसले करें और इधर की उधर बातें करें, तो वो लोग फिर दूसरों की नजरों में जगह नहीं बनाते। हारून अलैहिस्सलाम जहाँ एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग की सूरत में दिखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहते हैं, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डाले, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ और मुझको इन जालिमों के जहल में मत शुमार करो। क्या पता चला कि जब मुसलमान मुसलमान से और भाई भाई से लड़ता है तो दुश्मन खुश होते हैं। तो अल्लाह आज के मुसलमानों को भी झगड़ों से बचकर एक होने वाला बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे रब, मेरी खता माफ फरमा और मेरे भाई की भी, यानी हम दोनों को माफ कर दे और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम वाला है। गुस्सा आया, ठहरा नहीं, निकल गया। ये खूबसूरत आदत होती है मोमिन की। बेशक जिन लोगों ने गौसाला परस्ती की यानी बछड़े को पूजा, इन पर बहुत जल्द इनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत इस दुनिया की जिंदगी में भी पड़ेगी। और हम झूठी तोहमत लगाने वालों को ऐसी सजा दिया करते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए और फिर इसके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला, रहमत करने वाला है। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा दूर हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया और इनके मजामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जज्बाती घड़ियों में भी मकसद नहीं छोड़ा, लेकिन उस किताब का क्या कहिए जो आते ही दुनिया में टूट गई, और बाद में फिर उस कौम ने तो जो उसका हाल किया वो तो फिर कुरान में आता ही है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्ते मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब इनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू इनमें से चंद बेवकूफों की हरकत पर हम सबको हलाक कर देगा? ये वाक्या महज तेरी तरफ से इम्तिहान है। ऐसे इम्तिहानात से तू जिसको चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे। तू ही हमारा कारसास है, बस हम पर मगफरत और रहमत फरमा, और तू सब माफी देने वालों में सबसे अच्छा है। कौम की कमी कोताही को अल्लाह का नबी दुआओं के तौर पर पूरा करता है। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे और आखरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना अजाब इसी पर वाकई करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहित है। तो वो रहमत इन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो नोट कीजिए रहमतें पाने वाले काम। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं। ये है वो काम जो अल्लाह के नबी ने किए और इंशाल्लाह आज हमने भी करने हैं। अच्छी बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बनाते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं, और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे इनको दूर करते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाए, जो ईमान लाते हैं इन और इनकी हिमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं, ये नूर क्या है? कुरान का नूर है जो इनके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। ये है एजेंडा आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा के लिए। अगर वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ते हो तो तुम्हें ये काम करने होंगे। नियत कर लीजिए, कबूलियत के दिन चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे मुझसे भी अपने दीन का कोई काम ले ले। आप देखिए कि अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में माल की फरावानी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल और यकीन के साथ जुड़ी हुई है। तो माल ज्यादा हो ये शर्त नहीं है। 157 आयत से देखा, और किस पे आती है? ज़कात देने वाले और ईमान लाने वाले आयतों पे। अल्लाह ताला की रहमत इनके लिए जो तकवा इख्तियार करें, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें, अल्लाह और रसूल की इताअत करें, हलाल और हराम की पाबंदी करें, इंसानियत को बोझ और फंदों से निजात दिलाएं। ये कौन से बोझ हैं? रस्मों के, रिवाजों के और न जाने किस किस्म के। तो दुनिया और आखरत में फलाह का मेयार माल नहीं है बल्कि हकीकत में अल्लाह ताला की बात को मानना और उसको सुनना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह से आप देखिए कि जो लोग इन सारी चीज़ों में खो जाते हैं, पड़ जाते हैं, फिर वो अपने आप को किस तरफ ले जाते हैं? ये जिस तरह का मिलान होता है इंसान उसी तरफ चलता है। तो माल माल नहीं बल्कि फलाह और हिदायत मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। या अय्युहन्नास, आप कह दीजिए कि ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीन में है। मैसेज को नोट कीजिए, कहाँ से अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए ये पैगाम लाते हैं? तमाम आसमानों और जमीन में है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। सो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और इसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकाम पर ईमान रखते हैं, और इनकी पैरवी करो ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। और कौमे मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और इसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही ग्रोह का हिस्सा बना ले। और हमने इन 12 खानदानों में तकसीम करके सब की अलग अलग जमात कायम मुकर्रर कर दी। और हमने मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया जबकि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि अपने असा को फलां पत्थर पर मारो, बस फौरन इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया। और हमने इन पर अबर का साया फगन किया और इनको मनोसलवा यानी तरंजबीन और बटेरे यानी परिंदा भी था और एक मीठी चीज भी थी वो पहुंचाई। खाओ नफीस चीजों से जो कि हमने तुमको दी हैं। और इनकार करके क्या हुआ? नोट कीजिएगा, इस जुमले को हाईलाइट कर लें। उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते रहे। तो नेमतों की ना कदरी और ना शुक्री करने वाले अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, खुद ही नेमतों से महरूम हो जाते हैं। और जब इनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ इससे जिस जगह तुम रग़बत करो और जुबान से ये कहते जाना कि तौबा है और झुके झुके दरवाजे में दाखिल होना, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। क्या पता चला आजजी के साथ फतह को कबूल करो। जो लोग नेक काम करेंगे इनको मजीद और भी देंगे। सो बदल डाला इन जालिमों ने एक और कलमा जो खिलाफ था इस कलमे के जिसकी इनसे सिफारिश की गई थी। इस पर हमने इन पर एक आसमानी आफत भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को जाया करते थे। क्या पता चला ना शुक्री करने वाले खुद ही नुकसान भुगतते हैं। तो आयत 146 से 162 में देखा, तकबर करने वालों को हिदायत नहीं मिलती। बछड़े की परस्तिश का जिक्र देखा, हजरत मूसा की ईमान अफरोज दुआ को सुना, इत्तबाए रसूल का मेलान और आपसे ताल्लुक की बुनियादें बहुत ही खूबसूरत बयान हुई, और बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात और बनी इसराइल की नाशुक्री का तस्करा देखा। आप देखिए आयन तारीख के आईने में अल्लाह ताला हमें आईना दिखा रहा है। इसके बाद एक वाकया जिसमें हकीकत में अल्लाह ताला आपको मुझे इस बात का सबक देते हैं कि देखो तुम अपनी जिंदगी को देख लो। अगर आप 2-4 मिनट एक्स्ट्रा सदका करना चाहते हैं तो मैं शुरू कर लूं, अदरवाइज हम यहाँ रुक जाते हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। तो असहाबे सब सबीलुर रुश से सबीलुल गई तक कैसे पहुंचे, एक गो में वाक्या सुनकर इस पे गौर करेंगे, और आप इन लोगों से, इस बस्ती वालों का जो कि दरिया के किनारे या दरिया के करीब आबाद थे, इस वक्त का हाल पूछिए, जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज तो इनकी मछलियां जाहिर हो होकर इनके सामने आती थी, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थी। हम इनकी इस तरह आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो हुक्म नहीं मानते थे। और जबकि इनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल हलाक करने वाला है या इनको सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे रब के रूबरू उजर करने के लिए, और इसलिए कि शायद चिढ़ जाएं। उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए। सो जब वो इसको भूल गए जो इनको समझाया जाता था, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे, और इन लोगों को जो कि ज्यादती करते थे, एक सख्त अजाब में पकड़ लिया इस वजह से कि वो हुक्म नहीं मानते थे। यानी जब वो जिस काम से इनको मना किया गया था इसमें हद से निकल गए, तो हमने इनसे कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इन्होंने अल्लाह के हुक्म को डिस्टॉर्ट किया, अल्लाह ने इनकी शक्लों को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो देखिएगा, असाबे सब यानी मछलियां पकड़ी, पीछे हम इस किस्से को देख चुके सूरह बकरा में, यहाँ खतरे डिटेल्स हैं। क्या देखा कि तीन गिरोहों में लोग बटे, एक वो जिन्होंने काम किया, हफ्ते के दिन मछलियां भी पकड़ ली, दूसरे वो जो खामोश रहे, और तीसरे जिन्होंने मना किया। पहले दो को पकड़ लिया गया और बाद वाले सबको, यानी जो खामोश रहे और काम करते रहे उनको तो पकड़ लिया, और जिन्होंने मना किया, अमर बिल मारूफ किया, उनको अल्लाह ने छोड़ दिया। तो क्या पता चला, असाबे सब हीला साजी और हराम जराए आमदनी के फितने का शिकार हुए, और रुश्त के रास्ते से उतर कर गई के रास्ते पे चले गए। बस हम देखिए कि हफ्ते के दिन शिकार मना था, मगर मछलियां बहुत सामने आती थी। अभी आपने पढ़ा शुर्रन, ऐसे सर उठा उठा के देखती थी। उनको भी शायद पता था कि आज कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन कौमें फिर भी हीले बहाने करके ऐसे काम कर ही लेती हैं। फिर आप देखिए बाकी दिनों में मछलियां छुप जाती थी जब शिकार हलाल था। क्या पता चला कि किसी मुआशरे में हलाल सोर्स ऑफ इनकम का आसान हो जाना ये अल्लाह की आजमाइश होती है, फितना बनती है ये चीज। हीला साजी के हराम को हलाल किया इन्होंने, और तीन में से दो गिरोहों पर अजाब आया। तो क्या पता चला कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ना हो तो माशरे में हराम आम हो जाता है, अल्लाह ताला इससे बचाए। फिर फरमाया, और वो वक्त याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन जनी यहूद पर क्यामत तक ऐसे शख्स को जरूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सख्त सजा की तकलीफ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्दी से सजा दे देता है, और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मगफरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, बाज इनमें से नेक थे और बाज इनमें से दूसरी तरह के थे, यानी बाज इनमें और तरह के थे, और हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे, शायद के बाज आ जाएं। इसको हाईलाइट कीजिएगा। तकलीफें आजमाइशें इसीलिए आती हैं ताकि खरा खोटा अलग हो जाए, फितनों का यही मकसद है। फिर इसके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए कि किताब को इनसे हासिल किया, और वो इस दुनिया फानी का मालूमता ले लेते और कहते हैं कि हमारी जरूर मगफरत होगी। देखिए आज ये जुमला उम्मत मुस्लिमा में कसरत से बोला जाता है, खूब काम गलत करेंगे। यानी यहाँ इशारा है कि इनके लोग रिश्वत लेते थे, और जब मना किया जाता तो कहते थे कोई बात नहीं ना, हमें अल्लाह तो फिर मुआफ ही कर देगा। अगर आप लफ्ज उनके लिखना चाहते हैं अरबी के, तो हाईलाइट कर लीजिए इसी आयत के अंदर से लफ्ज सयुग्फरुलना। आज क्या उम्मत मुस्लिमा का ये पेट जुमला नहीं बन गया, अरे इतने पिटी नहीं बनो, अल्लाह माफ करता है, अल्लाह पकड़ेगा नहीं, ये होगा और वो होगा, और इस तरह की बातों में लोग पढ़ने लग जाते हैं। अल्लाह ताला आफियत में रखे सबको। तो गुनाहों के साथ मगफरत के वादे ये शैतान का धोखा है, गई के रास्ते पे होने की दलील है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दफा ऐसा कहते फिर क्या होता, हालांकि अगर इनके पास वैसा ही माल मता आने लगे तो इसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से सिवाय हक बात के और कोई बात की निस्बत ना करें, और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया, और आखरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा इख्तियार करते हैं, फिर क्या तुम नहीं समझते। तो क्या पता चला कि जब किताब से ताल्लुक टूटता है ना, तो इंसान फिर मनमानी बातें करता है। इसके बरक्स आप जैसे खूबसूरत लोग जो किताब को पाने के शौक में हैं, फरमाया जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो अपनी इसलाह करें सवाब ज़ाया न करेंगे। अल्लाह जो साथी सुन रहे हैं इनका भी सवाब ज़ाया न कर और इनकी इसलाह के इरादों को कबूल फरमा। मेरे साथ भी अल्लाह ताला ऐसा ही मामला फरमाए। फिर बनी इसराइली के चंद वाक्यात है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। और वो वक्त भी काबिले जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साहिबान की तरह इनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और इनको यकीन हो गया कि अब इन पर गिरा और कहा, को हाईलाइट करे, दो दफा ये जुमला आप सूरत बकरा में भी पढ़ चुके हैं, खुजू मा अतैनाकुम बिकुव्वा वस्कुरु मा फीही लअल्लकुम तत्तकून। क्या कहा उनको? जो किताब हमने तुमको दी है इसे मजबूती के साथ कबूल करो और याद रखो जो अहकाम इसमें हैं, इससे तवक्को की जाती है कि तुम मुत्तकी बनो। तो किताब को टिश्यू पेपर की तरह नहीं पकड़ना बल्कि मजबूत हाथों से थामना है। आगे है वादे अलस्त। खुद से एक सवाल करते हैं, क्या मुझे अपने रब से किया गया वादा याद है? चलिए आइए देखते हैं फिर। और ये बहुत प्यारी आयत है जिससे पता चलता है कि ये वादा याद रहे तो इंसान रुश्त के रास्ते पे रहता है, और रास्ता भूलता है ना तो फिर गई का रास्ता आ जाता है। वही जखा रब्बु का मिम बनी आदम, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्हीं के मुतल्लिक इकरार लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क्यामत के रोज यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो। इस जुमले को हाईलाइट करना चाहिए, हर उसको जो किसी भी मुशरिक घर में पैदा हुआ, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनकी बात इनकी नस्ल में हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डालेगा? यानी हमारा क्या कसूर है? हमारे माँ बाप चूंकि ऐसे काम करते थे तो हमने भी ये किया। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाए। इन आयात की तफसीर का लिंक इंशाल्लाह वेब पेज पे डाला जाएगा क्योंकि ये बहुत अहम आयात है। आज की जुबान में बोल देती हूँ, बिल्ट इन कर दिया अल्लाह ताला ने वादे अलस को आपके मेरे कंप्यूटर में। डाटा में जब कोई चीज फीड कर दी जाए तो वक्त पे निकाल ली जाती है ना, पहले आप चीजें इंस्टॉल करते हैं फिर उधर से यूज करते हैं, तो आपके मेरे सब के डाटा में अल्लाह ताला ने तौहीद को बिल्ट इन कर दिया। आज जो भी लोग तौहीद से हटकर कोई भी नाम इख्तियार करे, कह लीजिए कि वो रुश्त के रास्ते से उतर कर गई के रास्ते पे है। तो क्या सीखा 163 से 174 में? अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए बुराइयों से रोकना जरूरी है। बनी इसराइल पर क्यामत तक कोड़े बरसते रहेंगे। किताब के नाअहल वारिस छोड़ गए लोग, और अल्लाह के बंदों की तीन सिफात और वादे अलस्त। अपने आप पर लेकर सोचिए कि क्या वाकई मैं अपने आप को इन सारी चीजों को सुनते वक्त खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। अब आगे रुश्त के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे जाने वालों की मिसाल है। इंशाअल्लाह ताला इससे हम अगले पारे को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वक्त में बरकत दे और अल्लाह ताला आफियत के साथ रखे आपको भी मुझे भी। और हकीकत है कि अल्लाह ताला हमें इल्म के इन मोतियों की कदर अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خير.